آپ کا شکریہ بھائی نیول. بھائی نیول خدا آپ کو برکت دے. بہت بہت شکریہ. دوستو صبح بخیر. آج صبح دوبارہ اس ٹیبرنیکل میں آ کر خدا کی خدمت کرنا, بیماروں کے لیے دعا کرنا اور خدا کے کلام کی منادی کرنا بڑی شرف کی بات ہے, اور اس دن کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. جیسے ہی میں اندر آیا تو میں بڑا حیران تھا. ایک بھائی چلتا ہوا آیا اور کہا, میں اس کوڑی کی طرح نا شکرا نہیں ہونا چاہتا جس نے شفا پائی تھی. یہ بھائی رائٹ تھا, میں نے اس کے لیے دعا کی تھی اور خدا نے اسے مکمل شفا بخشی تھی, اور وہ روتا ہوا اوپر آیا اور مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ وہ شفا کے لیے خداون کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے, وہ واپس آ کر شکریہ کرنا چاہتا ہے. سب چلا گیا ہے, اب وہ بالکل ٹھیک ہے. ہم ایسی گواہیوں کے لیے شکر گزار ہیں. اور چارلی, آپ اور بھائی جیفری اگر آپ یہاں آ کر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تاکہ آپ کو کھڑا نہ ہونا پڑے. اور دوسرے بھائی وڈ ہیں, بس آپ یہاں اوپر آ جائیں. آپ یہاں بنچوں پر تھوڑی جگہ خالی ہے, بس آپ کو کھڑا ہونا نہیں پڑے گا. میرا خیال ہے یہاں تھوڑی سی جگہ ہے. جی ہاں, آپ ہمارے لیے موزیز ہیں. ہم آپ کو اس جگہ خوش آمدید کہتے ہیں. آئیں اور تشریف رکھیں. ہم خوش ہیں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ ایک بار کہا گیا تھا, میں خوش ہوا جب انہوں نے مجھ سے کہا, خدا آپ کو برکت دے بھائی. شکریہ, شکریہ, آپ کا شکریہ. میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر چلیں. یہی مسیحوں کے لیے اعزاز اور خوشی کی بات ہے کہ خداوند کے گھر میں جائیں. چاروں اطراف دیکھ رہا ہوں اور بہت سے میرے دوست آج صبح یہاں موجود ہیں. میں بہت زیادہ خوش ہوں. میں یہاں بھائی ڈوچ اور بہن ڈوچ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں جو اوہایو سے آئے ہوئے ہیں. پیچھے میں بھائی اور بہن آرمسٹرانگ کو دیکھ رہا ہوں جو اوہایو سے آئے ہیں. خدا آپ سب کو بہت برکت دے. اور وہ چاروں طرف دیکھ رہا ہوں, آپ دیکھیں بہت سے ہیں اور سب کا نام لینا مشکل ہے. بہن ہور, آپ کو کینٹکی سے یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوں. اور چارلی اور نیلی, بھائی جیفری اور ان کا خاندان, بہت سے ہیں جو دوسرے شہروں سے آئے ہیں. بس آج صبح ہم خداوند میں عظیم وقت کی توقع کرتے ہیں کہ خدا آج ہماری روحوں کو برکت دے اور جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے ہمیں عطا کرے. اور جیسا کہ اس جگہ کو چاروں طرف سے دیکھ رہا تھا, اگر میں یہاں سے اپنے سب دوستوں کو بلاتا تو ساری صبح ہی ان سے بات چیت کرتے گزر جائے گی. واپس کلیسیا میں آنا اچھا لگتا ہے تاکہ سب لوگوں سے ملا جائے اور ان کو دیکھا جائے. کیا ہوگا جب ہم آسمان پر جائیں گے؟ پھر ہم وہاں اس عظیم ابدی وقت میں ملیں گے اور خدا کے تخت کے سامنے سب مل کر رفاقت کریں گے اور سب برکتوں سے شادمان ہوں گے جو ہم حاصل کر چکے ہیں. ہم وہاں اس کی مانند ہوں گے اور اس کی صورت میں, اور ہم اس کی روح کے ساتھ اس کی خدمت اور پرستش ابد تک کرتے رہیں گے اور کبھی تھکیں گے نہیں. ذرا سوچیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ سوچ سکیں جو آپ کرنا چاہیں, لیکن جب کسی وقت آپ ایسا کرتے تھک جاتے ہیں. چارلی, میں سوچتا ہوں تمہارے لیے اور میرے لیے گلہریوں کے شکار سے بڑھ کر کچھ نہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں آپ یہ کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں. اور میں گھومنا چاہتا ہوں تاکہ پہاڑوں میں جاؤں اور سیر کروں, لیکن میں تھک جاتا ہوں. کبھی کبھی آپ کچھ مختلف کرنا چاہتے ہیں. اور میں کار چلانا پسند کرتا ہوں. کبھی کبھی میں تھکن محسوس کرتا ہوں اور تھک جاتا ہوں, اور میری قوت کنارے پر ہوتی ہے. میں اپنی کار میں کود کر بیٹھ جاؤں گا اور سٹیرنگ سیٹ پر بیٹھ کر گیت گاتا ہوا روڈ پر نکل جاؤں گا. میں بہت خوش ہوں اور کہتا ہوں میں بھی ان میں سے ایک ہوں یا کچھ اور. بس اس پہیے کو گھماتے ہوئے اور گاتے ہوئے اور اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے اور چلاتے ہوئے چلا جاتا ہوں, اور پھر ٹھیک تھوڑی دیر بعد میں تھک جاتا ہوں اور پھر گھر واپس آ جاتا ہوں اور کچھ اور شروع کر دیتا ہوں. لیکن جب ہم نئی بادشاہی میں خدا کی پرستش کے لیے پہنچیں گے تو وہاں کبھی بھی تھکاوٹ کے لمحے نہیں آئیں گے. بس ہمیشہ برکت, برکت اور برکت ہی ہوگی. لیکن تب ہم بدل جائیں گے. ہم تب اب جیسے نہیں ہوں گے. ہم مختلف ہوں گے, مختلف مخلوق اس سے جو ہم اب ہیں. اس لیے ہم خوش ہیں. میں سوچ رہا تھا, میں نہیں جانتا کہ میں نے اس بات کو بیان کیا ہے یا نہیں. میں کچھ عرصہ پہلے بھائی چارلی کے ساتھ کینٹکی میں تھا اور اس نے کہا, بھائی برہنم کیا خیال ہے کہ ہزار سالہ بادشاہی میں میں और आप गलेरियों का शिकार करेंगे? मैंने कहा, चार्ली मैं ऐसा नहीं सोचता। कहा, ठीक है, मगर हम इसे बहुत पसंद करते हैं। कहा, आप सोचते हैं जब हम हजार साल बादशाही में जाएंगे तो वहाँ हम ऐसा करेंगे? मैंने कहा, नहीं, हजार साल बादशाही में कत्लोगारत नहीं होगी। और उसने कहा, अच्छा तो हम इसे सिर्फ पसंद करते हैं। मैंने कहा, चार्ली क्या हो, अगर मैं तुम्हें कायल कर सकूं कि एक वक्त था कि तुम सूर थे और तुम्हें उठाया गया ताकि तुम एक आला मखलूक बनो, एक इंसान बनो, और क्या आप वापस एक सूर बनकर खुश रहना पसंद करेंगे? कहा, नहीं। मैंने कहा, देखें, आप सूर से कहीं बढ़कर होंगे, अब आप एक इंसान हैं और आप कभी भी सूर बनना नहीं चाहेंगे। मैंने कहा, अब इसे 10,000 से जरब दो और यही है जो तब होगा जब आप बदल जाएंगे। जो कुछ आप हैं मजीद ऐसे नहीं होंगे, तो फिर आप दोबारा इंसान बनना पसंद नहीं करेंगे। ये ठीक बात है, ये कुछ मुख्तलिफ होगा। मैं ये सोचकर खुश हूँ ये जानते हुए कि एक दिन हम बुलंदियों पर जाएंगे। ठीक है, अब अगर खुदावर ने चाहा तो अगले इतवार को जो आने वाला है, तब मैं यहाँ से अपने कुछ अच्छे दोस्तों के साथ वोइमिंग या ऐड हो जाने वाला हूँ। बाई माइनर आर्गन ब्राइट, बाई क्लेट सोमवोर और क्रिश्चियन बिजनेसमैन वाले मेरे अच्छे दोस्त हैं। अगले हफ्ते, बल्कि अगले हफ्ते से अगला हफ्ता, अब मुझे 7 को डेलास टेक्सास में वॉइस ऑफ हीलिंग कन्वेंशन में होना है और मैं 7 की रात को वहाँ मुनादी करूँगा और फिर मैं वापिस आ जाऊँगा ताकि बाई ऑर्गन ब्राइट और क्रिश्चियन बिजनेसमैन वालों के साथ एडहा हो जाऊँ। और हो सकता है वहाँ जाने से पहले मैं एक रात मिनियापोलिस में ठहरूं और फिर एक दिन क्रिश्चियन बिजनेसमैन के साथ नाश्ते पर ठहरूं। खुदावंद की मर्जी हुई तो अगले इतवार की सुबह मैं दोबारा इस टैबरनेकल में आना चाहता हूँ। और अगर ऐसे हो पाया और खुदावंद की मर्जी हुई, अगर खुदावंद ने चाहा, तो मैं हवा के बगोले के उन्वान पर बोलना चाहता हूँ इस हफ्ते के लिए। मेरे दिल में ये बोझ है। और एक दिन बहुत ही सवेरे, सुबह के 4 बजे मैं जाग उठा और मुझे ये ख्याल मिला उस दिन कलवरी पर। और आज सुबह मैं जिस उन्वान पर बोलना चाहता हूँ वो है उस दिन कलवरी पर। और अब इसे पढ़ने के लिए अपनी अपनी बाइबल को खोलें। कलाम में से मुकद्दस मत्ती की अंजील के 27वें बाब को निकालते हैं और हम 27वीं आयत से शुरू करेंगे और कलाम का ये हिस्सा पढ़ेंगे और स्याको सबाग देखेंगे और फिर हम जल्दी ही शुरू करेंगे और मुनादी के बाद हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। और हो, यहाँ पिछले वक्त से वो मेरी नई खिदमत का नमूना वापिस ला रहा है और मेरी उस इबादत से बहुत सी गवाहियाँ आई हैं, बजाय पिछली इबादत के जो काफी अरसे से चल रही हैं। इसके बारे में कुछ है, आपको उस शख्स से राब्ता करना चाहिए, चाहे कितना भी मफूकल फितरत दिखाया जाए। लेकिन देखें, शिफा तो शख्सी ईमान पर होती है। अब अगर किसी का शख्सी ईमान है और वो देखते हैं किस तरह पाक रूह सामीन के ऊपर जाता है और कहता है फला फला बात हुई है और आपका ये नाम है और आप फला फला जगह से आए हैं और आपने ये किया है और ये इस तरह होगा और आप जानते हैं वैसे ही होता है, फिर उस शख्स को देखना चाहिए जो यहाँ बैठा है और कहना चाहिए कि खुदा यहाँ मौजूद है और मैं अपनी शिफा कबूल करता हूँ। लेकिन बजाय इसके शख्स ये कहता है मुझ पर हाथ रखें और मेरे लिए दुआ करें और मैं शिफा पा जाऊंगा। और हमें यहाँ अमेरिका में इसी तरीके से सिखाया गया है और इसी तरह ईमान रखते हैं और ये यकीनन कलाम के मुताबिक है। लेकिन हम देखते हैं कि अफ्रीका और मुख्तलिफ जगहों पर अगर ऐसी कोई इबादत होती है तो तमाम सामीन आगे बढ़कर एक ही वक्त में अपनी शिफा को हासिल कर लेते हैं क्योंकि उन्हें कुछ सिखाया नहीं गया, समझे, यहाँ तक कि उन्हें शिफा के बारे में कुछ भी सिखाया नहीं गया। और फिर जब वो ये देखते हैं तो वो जानते हैं कि खुदा जिंदा है और अगर वो जिंदा है तो वो सबसे बड़ा है और वो शिफा भी देता है। और यही है क्योंकि बुनियाद पहले रखी हुई है कि वो शाफी है और लोगों को शिफा देता है। फिर जब वो उसकी हजूरी को उसकी कलीसिया के दरमियान देखते हैं तो तब वो कहते हैं ये तय हो गया है और हमें इसकी जरूरत है, लेकिन हमें सिखाया गया है बीमारों पर हाथ रखे जाएं और इस तरह की और बातें। यही वजह है कि अमेरिका में ये अच्छी तरह काम नहीं करता। अब याद रखें, अगले इतवार की सुबह अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो बेशक भाई नेवल इसका ऐलान करेंगे और ये हवा का बगोला। अब मैं आपको थोड़ा और वक्त दे रहा हूँ कि अपनी बाइबल में से मत्ती 27 को निकालें। आए मुकद्दस मत्ती की अंजील में से 27वीं आयत को पढ़ना शुरू करते हैं। कलाम के पढ़े जाने को गौर से सुने। इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यसु को किला में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि ऐ यहूदियों के बादशाह अदाब, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगा को उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। जब बाहर आए तो उन्होंने शमौन नाम एक करीनी आदमी को पाकर उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए।
Onto a place called Golgotha, that is to say, a place of a.
और उस जगह जो गुलगत्ता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है, पहुंचकर पित मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चखकर पीना ना चाही। और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़े कुरा डालकर बांट लिए ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे कुर्ते पर कुरा डाला। और वहाँ बैठकर उसकी निगेबानी करने लगे और उसका इल्जाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह है। उस वक्त उसके साथ दो डाकू मसलूब हुए, एक दाहिने और एक बाएं। और राह चलने वाले सर हिला हिला कर उसको लान तान करते और कहते थे, ऐ मक्दस के ढाने वाले और तीन दिन में बनाने वाले, अपनी तई बचा, और अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतरा। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीहों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपनी तय नहीं बचा सकता, ये तो इसराइल का बादशाह है, अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाएं। इसने खुदा पर भरोसा किया है, अगर वो इसे चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूँ। इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरका में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया, मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया इसे बचाने आता है कि नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज में चिल्लाकर जान दे दी और मक्दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے. پس صوبے دار اور جو اس کے ساتھ یسو کی نگہبانی کرتے تھے بھونچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر کر کہنے لگے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا. آئیں ہم کچھ لمحوں کے لیے اپنے سروں کو دعا میں جھکائیں.
Lord, we know that thou art God, and it's
خداوند ہم جانتے ہیں کہ تو ہی خدا ہے اور یہ اس مقدس پاک کلام کو پڑھنے کے بعد ہم آج بھی تیری لا تبدیل فطرت کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ تو ابد تک خدا ہے. اور یہاں ایسا لگتا ہے کہ یسو کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا جیسے کہ وہ گناہ گاروں کے ہاتھوں میں تھا اور ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا اور اس پر تھوکا گیا اور ٹھٹھا کیا گیا اور وہ صلیب پر لٹک رہا تھا, خون بہ رہا تھا اور مر رہا تھا. اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی مدد کرنے والا کہیں بھی نہیں تھا, یہاں تک کہ وہ چلایا بھی, اے میرے خدا, اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. لیکن تو اس وقت کام کرتا ہے جب کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا. خداوند ہمیں بتایا گیا ہے کہ کوئی دریا جو ہم پار نہیں کر سکتے, کوئی پہاڑ جسے ہم پار نہیں کر سکتے, مگر خداوند تو ان کاموں کو کرنے کا ماہر ہے جو دوسرے نہیں کر سکتے. تو اپنے کام میں ماہر ہے. تو اس دن کلوری کے سبب کو جانتا تھا. تو خدا ہوتے ہوئے لامحدود ہے اور آنے والی گھڑی کو جانتا ہے. لیکن جب یہ پورا ہو گیا تب تو نے دکھا دیا کہ تو خدا ہے اور اختیار رکھنے والا ہے. تو نے زمین کو ہلا دیا اور مقدس لوگ جو زمین میں سوئے ہوئے تھے وہ جی اٹھے. تو نے سورج کو رات کی تاریکی میں بدل دیا اور دکھا دیا کہ تو ہی خدا تھا, لیکن تو کافی دیر تک خاموش رہا. اس سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جب تک پاک روح میں چل رہے ہیں تو خدا کے ہاتھ کی رہنمائی میں ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا غلط ہوتا ہے, کیونکہ پھر بھی ہم کلوری کی طرف دیکھتے ہیں کہ خدا ٹھیک گھڑی اور ٹھیک وقت پر بولے گا. اب خدا باپ, ہم اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں. ہم اپنی رہنمائی کے لیے تیری روح کو مانگتے ہیں. ہماری رہنمائی کر جیسے کبوتر برے کی رہنمائی کرتا ہے. چاہے ہمیں جو کچھ بھی ہو تو بھی ہم فرما بردار رہیں گے, یہ جانتے ہوئے کہ خدا سب اچھا کرتا ہے اور یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. آج اس عبادت میں ہمارے ساتھ ہو. ہم دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نجات پانا چاہتے ہیں, تو انہیں نجات دے, اور جو نجات کی تلاش میں ہیں تو انہیں ابدی زندگی دے, کیونکہ وہ ایسی چیز کی تلاش میں ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ تو بیماروں اور مصیبت زدوں کو شفا دے جو شفا کی تلاش میں یہاں آئے ہیں, اور ہم اس کے لیے آپ کی تعریف کرتے ہیں. ہم یہ آپ کے بیٹے ہمارے منجی یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں. آمین. اب آج صبح بولنے کے لیے جو عنوان میں نے چنا ہے, میں آپ کی توجہ اس پر دلانا چاہتا ہوں. اس دن کلوری پر ایسا لگتا ہے جیسے یہ عنوان وقت کی مناسبت سے ہٹ کر ہے. یہ تو مبارک جمعے کو ہونا چاہیے. کلوری کی یاد تو ہر روز ہونی چاہیے. ہم نے اس کے بارے میں اتنا سنا ہے اور اس کے بارے میں اتنا پڑھا ہے. وقت کے آغاز ہی سے منادوں نے اس کی منادی کی. गाने वालों ने जमानों से इसे गाया है। नबियों ने इसके होने से 4000 साल पहले बता दिया था और आज के नबी भी इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये हुआ था। ये एक ऐसा खास दिन है उन तमाम खास दिनों में से जो खुदा ने जमीन पर होने दिए, और कलवरी बनी नो इंसान के लिए बहुत ही खास है। मेरा ख्याल है कि हमारे लिए अच्छा होगा कि हम वापस पीछे जाकर इसका जायजा लें और देखें कि इसका हमारे लिए क्या मतलब है, क्योंकि मैं पुर यकीन हूँ कि इस आखिरी घड़ी में जिसमें हम रह रहे हैं, हम खुदा की खास चीजों की तलाश में हैं जो हम जान सकते हैं, और वो सब जो हम हासिल कर सकते हैं वो सीखने के लिए हम यहाँ आए हैं कि खुदा ने हमारे लिए क्या क्या किया है और क्या कर रहा है, और जाने कि उसने हमारे साथ क्या करने का वादा किया है। और इसलिए हम चर्च आते हैं, और इसलिए मुनाद मुनादी करता है, इसलिए वो कलाम पर ध्यान देता है और इसका मुतालिया करता है और तहरीक के लिए जद्दोजहद करता है, क्योंकि वो खुदा के लोगों का सरकारी खादम है, और वो कुछ तलाश करने की कोशिश करता है ताकि खुदा अपने लोगों से कुछ बोले जिससे उनकी मदद हो सके। हो सकता है कि ये उनके गुनाहों की वजह से उन्हें मुजरिम ठहराए, लेकिन तो भी ऊपर उठने में उनकी मदद करेगा ताकि वो अपने गुनाहों को छोड़कर दोबारा खुदा की खिदमत करने के काबिल हो जाएं। और खादमों को इन बातों की तलाश में रहना चाहिए, और ये दिन तमाम दिनों में से बहुत खास दिन है, और हम तीन मुख्तलिफ बातें इस दिन के बारे में देखेंगे। हम सैकड़ों बातें इस दिन के बारे में देख सकते हैं, लेकिन आज सुबह मैंने इसके बारे में तीन मुख्तलिफ और जबरदस्त बातें चुनी हैं, जिन्हें हम अगले कुछ लम्हों में देखना चाहते हैं कि कलवरी हमारे लिए क्या मायने रखती है। और मैं दुआ करता हूँ कि हर एक गुनहगार जो यहाँ मौजूद है इसके सबब से मुजरिम ठहरे, और ये हर एक मुकद्दस को घुटनों के बल ले आए, और हर एक बीमार का ईमान खुदा पर आ जाए ताकि वो यहाँ से सेहतमंद होकर जाए, हर गुनाहगार बच्चा और हर बरगश्ता वापिस आए और अपने आप पर शर्मसार हो, और हर मुकद्दस खुशी करे और नई उम्मीद और नई कुव्वत पाए। एक खास और अजीम बात कलवरी के बारे में कि वो हमारे लिए क्या अहमियत रखती है। दुनिया के लिए उसने एक ही बार गुनाह की सजा की कीमत चुका दी। इंसान गुनाहगार पाया गया था, और गुनाह की सजा कोई इंसान चुका नहीं पाया था। सजा इतनी बड़ी थी कि कोई इंसान चुका नहीं सकता था। मैं यकीनन इस पर ईमान रखता हूँ कि खुदा ने इसे इसी तरह ठहराया था कि सजा इतनी बड़ी हो कि कोई इंसान इसे चुका ना सके, ताकि वो खुद इसे चुकाए। और अब गुनाह की सजा मौत थी। और हम सब गुनाह में पैदा हुए और खता में सूरत पकड़ी और दुनिया में झूठ बोलते हुए आए, इसलिए हम में से कोई भी इस लायक नहीं था, यानी जमीन पर कोई भी इस लायक ना मिला। और गुनाह जमीन पर शुरू नहीं हुआ, बल्कि गुनाह का आगाज आसमान पर हुआ। लूसीफर अब्लीस ने मखलूक को मुजरिम बना दिया। वो अपनी नाफरमानी से पहले जमीन से जुड़ा हुआ नहीं था। गुनाह का आगाज आसमान पर हुआ, जहां खुदा ने फरिश्तों और वगैरह वगैरह को रखा था, और उसी बुनियाद पर बनी नो इंसान को रखा था। इल्म, इल्म का दरख्त, हयात का दरख्त, और इल्म का दरख्त जहां से इंसान अपना चुनाव कर सकता था। और जब लूसीफर को अपने चुनाव का इख्तियार दिया गया, तो वो खुदा से बेहतर कोई चीज चुनना चाहता था। यहां से परेशानी का आगाज हुआ। और गुनाह की एक शर्त थी और वो शर्त मौत थी और मौत सजा थी और इसको जानने के लिए हम इसकी पूरी तफसील में जा सकते हैं और मैं इसका यकीन नहीं करता कि ये एक मौत है बल्कि ये एक जिंदगी है। मैं ईमान रखता हूँ कि जिस इंसान के पास अबदी जिंदगी है वो कभी नहीं मर सकता। मैं ईमान रखता हूँ जो जान गुनाह करती है वो मुकम्मल तौर पर फना हो जाएगी, क्योंकि बाइबल कहती है जो जान गुनाह करेगी वो जरूर मरेगी, ना कि इंसान बल्कि वो जान जो गुनाह करेगी। इसलिए शैतान जरूर मरेगा और मुकम्मल तौर पर फना हो जाएगा। मैं उस अकीदे से इख्तलाफ रखता हूँ जो कहते हैं कि शैतान भी निजात पाएगा। उसने गुनाह किया और वो गुनाह का बानी है और उसकी रूह ने गुनाह किया है और वो एक रूह है और वो रूह मुकम्मल तौर पर फना हो जाएगी और उसका कुछ भी बाकी ना बचेगा। और जब गुनाह ने पीछे इब्तदा में जमीन पर आसमान से काली चादर फैला दी तो उसने सचमुच जमीन को मफलूज कर दिया। उसने जमीन की हर मखलूक को मुंतशिर कर दिया और खुदा की सारी मखलूक को गुलाम बना दिया। इंसान दुख, मुसीबत, परेशानी और मौत की गुलामी में चला गया। सारी फितरत इसके साथ गिर गई। गुनाह बेहोश करने वाला था जिसने जमीन को मफलूज कर दिया। और फिर हम यहाँ ना उम्मीद थे क्योंकि जमीन की हर एक मखलूक इसके ताबे हो गई थी। हर एक जिसने जमीन पर जन्म लिया वो इसके ताबे था। इसलिए इसे किसी ऐसे मकाम से आना था जहाँ गुनाह नहीं था। ये जमीन से नहीं आ सकता था। हम में से कोई भी एक दूसरे को नहीं छुड़ा सकता था। इसे तो कहीं और से आना था। इसलिए जब इंसान ने महसूस किया कि वो अपने खुदा से अलग हो गया है तो वो भटकने लगा। वो रोए, वो चिल्लाए, उन्होंने मेहनत की, वो पहाड़ों और बियाबानों में भटकते रहे और उस शहर की तलाश करते रहे जिसका बनाने वाला और ममार खुदा था। क्योंकि इंसान जानता था कि वो कभी खुदा की हजूरी में वापिस आएगा तो वो इस पर उससे बातें कर सकेगा, लेकिन वापिस आने का कोई रास्ता नहीं था। वो खो चुका था और वो नहीं जानता था कि किस राह पर जाए, इसलिए वो भटकता ही रहा और वापिस जाने की राह तलाश करने की कोशिश करता रहा। किसी चीज ने उसे अंदर से बताया कि एक तो कामिल मकाम से आया है। आज सुबह इस इबादत के अंदर नजर आने वाले सामीन में से कोई ऐसा शख्स नहीं है या टेप पर सुनने वाले सामीन में से जहां ये पैगाम जाएगा, यहां या कहीं और कोई भी नहीं है जो कामलियत की तलाश करता। आप सोचते हैं कि आपने अपने कर्जों की अदायगी कर दी है, बस ये तय हो गया है। जब आपने अपने कर्जों की अदायगी कर दी तो फिर आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है और जब बीमारी खत्म हो गई तब अदायगी और बढ़ गई। पहली बात जो आप जानते हैं कि आपके बाल सफेद हो रहे हैं और फिर आप दोबारा जवान होना चाहते हैं। और कुछ है जो हर वक्त मुसलसल होता रहता है और इसका सबब गुनाह की लहर है। और क्योंकि आप अपने दिल में सोचते हैं कि आप उसकी तलाश में हैं, तो ये साबित करता है कि कहीं कामलियत है, कहीं कुछ ना कुछ है। यही वजह है कि बहुत मर्तबा बल्कि आज भी गुनाहगार भटक रहा है। एक जवान लड़की अपनी शोहरत के लिए अपने बाल कटवाती है और अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए मेकअप करती है और दिखावे के लिए तरह तरह के कपड़े पहनती है, क्योंकि फक्त यही है जो वो ढूंढ सकी। कहीं उसने अपने आप को तलाश करने की कोशिश की कि वापिस आ जाए। इस तरह करने से वो किसी शख्स से अपने ऊपर सीटी बजवाती है। वो उसे हाथ से इशारा करता है और तफरी करता है। नौजवान लोग लड़की से यही करेंगे ताकि उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश कर सकें। पड़ोसी अपना घर बनाएगा और इस तरह का बनाएगा कि दूसरे से अच्छा नजर आए। हम हर वक्त कुछ ना कुछ तलाश करते रहते हैं और कुछ छोटा मोटा इस पर चलता रहता है। एक जवान लड़की दूसरी लड़की को अपने से ज्यादा शोहरत वाली पाती है। पड़ोसी को अपने घर से दूसरा घर ज्यादा अच्छा लगता है। एक खातून दूसरी खातून के लिबास को देखती है तो उसे अपने से अच्छा लगता है। हम में कुछ है जो किसी को ढूंढ रहा है और ये इस बात की तरफ इशारा है कि हम खोए हुए हैं। हम कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हैं जो हमें मुतमिन करे और हमारे अंदर की भूख को मिटा दे, मगर ऐसा लगता है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बनी नो इंसान ने सदियों से इसकी कोशिश की है और इसके लिए रोए और चिल्लाए और वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे, तब भी वो इसे तलाश नहीं कर पाए हैं और सारी दुनिया में भटक रहे हैं। आखिर में एक दिन वो कलवरी का दिन आ गया और एक था जो जलाल से नीचे उतरकर आया, जिसका नाम यीशु मसीह था, खुदा का बेटा जो जलाल में से आया और कलवरी तैयार की गई। वो दिन था जब कीमत अदा की गई और गुनाह की सजा हमेशा के लिए तय हो गई और वो रास्ता खोल दिया गया जिसके लिए हम भूखे और प्यासे थे। ये इत्मीनान को ले आया। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कभी किसी वक्त कलवरी पर गया हो और उसे वैसे ही देखा हो जिस तरह वो थी, और हमेशा एक सी रह सकती है और हर एक चीज की जिसकी उसने तमन्ना की हो वो उसे मिल जाती है जब वो उस मकाम पर पहुंच जाता है। ये इतना खास दिन है और ये इतनी खास बात है जिसने दुनिया को हिला दिया। उसने दुनिया को इस तरह हिलाया कि इससे पहले दुनिया को इस तरह हिलाया नहीं गया था। जब यीशु कलवरी पर मुआ तो गुनाह की सजा की कीमत अदा कर दी गई। ये गुनाह भरी दुनिया तारीकी में थी। सूरज दोपहर के वक्त डूब गया और ये एक बहुत ही दर्दनाक वक्त था। जमीन तड़क गई और चट्टानें फट गईं और मुर्दा बदन कब्रों से बाहर निकल आए। उसने क्या किया? खुदा ने अपने आप को कलवरी पर जीरो कर दिया। उसने उस हैवान को जो अबलीस कहलाता है हमेशा के लिए घायल कर दिया। अब तब से वो ना अहल हो गया है जब से कलवरी बनी नो इंसान के लिए रोशनी लाई है, और हर कोई जानता है कि एक घायल हैवान जिसकी कमर टूट गई हो इधर उधर रेंगता फिरता है। और शैतान को कलवरी पर मात हुई और जमीन ने ये साबित कर दिखाया, सबसे बड़ी कीमत जो कभी अदा की गई, वो फक्त एक ही था जिसने ये कीमत अदा की। वो आया और कलवरी पर इसकी अदायगी कर दी, और यही वो जगह थी जहां सबसे बड़ी कीमत अदा की गई। यही वो बातें हैं जो खुदा की मांग थी, और कोई आदमी इस लायक नहीं था, कोई शख्स इस काबिल नहीं था, कोई आदमी इसे अदा नहीं कर सकता था। इसलिए खुदा खुद नीचे आ गया और इंसान बन गया और इंसानी जीवन इंसानी तमन्नाओं के मुताबिक बसर किया और कलवरी पर मसलूब हुआ। और वहाँ शैतान ने ये सोचा कि वो ये नहीं करेगा, वो इसमें से नहीं गुजरेगा, लेकिन वो गतसमनी से और हर उस आजमाइश से जो इंसान पर आती है होकर गुजरा। वो सब इंसानों की तरह आजमाया गया और उसने हमारी कीमत अदा की। यही है जिसने जमीन पर तारीकी फैला दी, जैसे ऑपरेशन के लिए बेहोश करना। जब एक डॉक्टर किसी शख्स को बेहोश करता है तो पहले उसे जांचता है इससे पहले कि वो ऑपरेशन करे। जब खुदा ने कलीसिया का ऑपरेशन किया तो संसार को बेहोश कर दिया और फितरत में हलचल मच गई। इसमें कोई हैरानगी नहीं, खुदा इंसानी जिस्म में मर रहा था। यही वो वक्त था जिसका दुनिया इंतजार कर रही थी, मगर बहुत सारे जान ना पाए, जैसे कि आज है। बहुत सारे लोग इन बातों के मुंतजिर थे मगर इन बातों को पहचान नहीं पाए। ये इस तरह महसूस नहीं करते। ये आज भी दुनिया की चीजें और दुनिया की लज्जत चाहते हैं और अपनी मर्जी पूरी करने की कोशिश करते हैं। वो बहुत सारे निशान थे जिन्होंने इस दिन की निशानदही की और बहुत सारी बातें पेशगी बताई गईं। पेशगी अलामत में बर्रा, बछड़ा, कुमरियां और बहुत सारी चीजें थी मगर ये गुनाह को खत्म ना कर सकी, ये मौत को मात ना दे सकी क्योंकि जमीन शैतान के कंट्रोल में थी। वही चट्टाने जिन पर वो चलता था उनके नीचे गंधक जल रही थी और लूसीफर शुभ का फर्जंद था और वो इस जमीन पर जिसमें आग और गंधक जलती है चला करता था। यही चट्टाने ठंडी हो गई जब यीशु ने कलवरी पर अपनी जान दी और जमीन लरज गई, कीमत की अदायगी की गई और शैतान के जुए तोड़ दिए गए। खुदा ने इसे वापिस इंसान के हाथों में कर दिया और इंसान को वही ले आया जिसकी वो तलाश कर रहा था क्योंकि उसे मजीद रोना नहीं था। वार किया और उसने शैतान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और वहाँ कलवरी पर उसने बीमारी और गुनाह की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ये कलवरी जमीन पर रहने वाले हर एक फानी इंसान को गुनाहों की माफी के साथ वापिस खुदा की हजूरी में लाती है। हालेलुया, हमारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं। अब शैतान हमें खुदा से अलग करके वापिस तारीकी में नहीं ले जा सकता। वहाँ एक शारा बनाया गया है, वहाँ एक टेलीफोन है जिसकी तार जलाल में जाती है और हर एक शख्स उस तक रसाई हासिल कर सकता है। अगर कोई शख्स गुनाह से बरा है तो ये उससे जोड़ती है, उसके गुनाहों की माफी हो सकती है और फक्त यही नहीं बल्कि उस गुनाह की कीमत अदा कर दी गई है। हो, आपको ये नहीं कहना मैं इस लायक नहीं हूँ। यकीनन आप इस लायक नहीं हैं और ना कभी हो सकेंगे, मगर जो लायक था उसने आपका मकाम ले लिया है। आप आजाद हैं। अब आपको मजीद भटकना नहीं है, आपको इस जमीन पर दुनिया की ख्वाहिशात के लिए जीना नहीं है क्योंकि एक चश्मा लहू से भरा है जो इमैनुअल की नसों से बहता है, जहां गुनाहगार डूब जाता है और अपनी खताओं के दब्बे धोता है। आप अब खोएंगे नहीं, यहां एक शाहरा है और एक राह है और ये मुकद्दस शाहरा कहलाती है। नपाक इस पर चल नहीं सकते और जो पहले उस चश्मे से होकर आया है वही इस शाहरा पर चल सकता है। उसने शैतान की कुव्वत को तोड़ डाला है, उसने जहन्नम के कैद खानों को हर एक इंसान के लिए जो इस जमीन पर कैद था खोल दिया है, जो खौफ ज्यादा था कि जब वो मरेगा तो मौत उसके साथ क्या करेगी। कलवरी पर उसने उन कैद खानों के दरवाजों को खोल दिया है ताकि हर कैदी आजाद हो जाए। अब आपको गुनाह से मजीद दुख उठाना नहीं पड़ेगा। अब आपको मजीद अपना आप शैतान को नहीं देना है, यानी शराब नोशी, सिगरेट नोशी, जुआ खेलना और झूठ नहीं बोलना है। आप दयानदार, रास्तबाज और अच्छे हो सकते हैं और शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि आपने वो तार पकड़ ली है, जिंदगी की तार को थाम लिया है जिसका लंगर जमानों की चट्टान है। आपको इससे कोई नहीं हिला सकता, इसे कोई हवा नहीं हिला सकती, कोई नहीं कुछ भी इसे हिला नहीं सकता। मौत भी हमें खुदा की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकती जो कि मसीह यीशु में है। बस यही कलवरी का मतलब है। इंसान जो गुलामी में थे वो आजाद हो चुके हैं। इंसान एक वक्त में मौत से डरता था मगर अब मौत से नहीं डरता। अब एक इंसान उस शहर में जा सकता है जिसका ममार और बनाने वाला खुदा खुद है। इंसान अब उस शाहरा पर चल सकता है और अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा सकता है क्योंकि वो आजाद हो चुका है। हालेलुया, ये छुड़ा लिया गया है। अब मजीद इसे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब खुदा ने हमें जानने के लिए एक राह दे दी है कि हम गलत हैं या ठीक हैं। खुदा ने हमें बख्श दी है, हमारे गुनाह खत्म हो चुके हैं। उस दिन कलवरी पर इनकी कीमत अदा कर दी गई है। जब हम ये सब देखते हैं तो इसमें हैरत नहीं कि शायर ने लिखा, दरमियान से फट गई चट्टाने और आकाश पर छा गया अंधेरा, मेरे छुड़ाने वाले ने अपना सर झुकाया और मर गया, खोले हुए पर्दे ने राह दिखाया, आकाश जुमा इस अवधि दिन के आगाज पर इब्राहिम को अब मजीद इधर उधर उस शहर की तलाश में नहीं भटकना, गुनाहगार को मजीद अब नहीं भटकना है कि वो बच सकता है या नहीं, गुनाहगार बीमार को मजीद अब नहीं भटकना कि वो शिफा पा सकता है या नहीं। वो उस दिन कलवरी पर खोला हुआ पर्दा मुकम्मल फतह की राह दिखाता है। खुदा अपने रूह की कुव्वत हमें देता है कि इन सब बातों पर फतह का नरसिंगा फूंकें। वो फक्त हमें इस पर ईमान रखने को कहता है। ये उस दिन कलवरी पर हुआ। ऐसा दिन ना कभी आया और ना कभी आएगा। अब मजीद इसकी जरूरत नहीं है। कीमत अदा कर दी गई है और हम छुड़ाए हुए हैं। खुदा का शुक्र हो, हम छुड़ाए हुए हैं। अब आपको और नहीं भटकना, अब और अंदाजे नहीं लगाने हैं। ये सब ले लिया गया है और वो पर्दा हटा दिया गया है और हम शाहरा पर हैं ताकि और इधर उधर ना भटकें, बल्कि ईमान रखें और सीधा आगे बढ़ते रहें और हम सीधा खुदा की हजूरी में चलते रहें। इब्राहिम जानता था और बाकी सब भी जानते थे जब वो उस शहर के मुतलाशी थे कि वो कहीं और से हैं। और कुछ हुआ जब वो मफलूज धरती पर रह रहे थे। जलजले आते हैं, तूफान आते हैं, जंगें और कत्लो गारत होता है। भेड़िया और बरा एक दूसरे के खिलाफ हैं और भेड़िया बरे को खा जाता है और शेर बैल को खा जाता है। ये ठीक नहीं लगता, कोई गड़बड़ है। वो जानता था कोई गड़बड़ है। आदमी भाई भाई का कत्ल करता है, बाप बेटे का कत्ल करता है, बेटा बाप को कत्ल करता है। कुछ गड़बड़ है, कोई बूढ़ा हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई कमजोर हो रहा है, किसी पर बीमारी है क्योंकि वो गुलामी में है। दरख्त बढ़ते हैं पर अमर नहीं है, वो मर जाते हैं। पहाड़ बदल जाते हैं, समुन्दर सूख जाते हैं, नदियाँ खुश्क हो जाती हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है। और उसने एक शहर बल्कि एक मकाम ढूंढा जहाँ ये सब कुछ नहीं था। वो जान गया अगर वो वापस उसकी हजूरी में पहुँच जाए जिसने उसे ठीक बनाया था तो ये उससे बातें कर सकेगा। हो आज सुबह गुनाहगार के लिए ये कैसी खुशकिस्मती है कि वो जान गया है कि उसे अब वो रास्ता मिल गया है और ये रास्ता उस दिन कलवरी पर खोल दिया गया। इसके लिए सब बुजुर्गों ने बड़ी छानबीन की और तलाश की, मगर कलवरी ने ये आपको मुफ्त दे दिया है। आप कैसे इसे छोड़ सकते हैं? आप इसे छोड़कर कैसे एक तंजीम में जा सकते हैं? आप इसे छोड़कर कैसे कुछ और या दुनिया की ऐशो इशरत ले सकते हैं? क्यों आप इसे कबूल नहीं करते? पर्दे का खुल जाना इंसान को हर गुनाह से पाक करके वापस खुदा की हजूरी में लाना है और राह उसके सामने खोल दी गई है उन चीजों के लिए जिनकी वो तलाश कर रहा था। आसमान, जलाल, अमन, अबदी जिंदगी और सब कुछ उसके सामने है। वो दिन था जब मौत और शैतान की ताकत को नेस्त और नबूद कर दिया गया। उसने हर चीज का इख्तिताम कर दिया और मैं उसे वहाँ देख सकता हूँ। वो अदन का बर्रा था, पहली अलामत में ही वो नजर आता है। जब हाबल ने ईमान के वसीले काइन से अच्छी कुर्बानी गुजरानी तो उसने अंगूर की बेल बर्रे के गले में बांधी और उसे उस चट्टान तक घसीटता हुआ ले गया और उसने अपने हाथ में एक नोकीला पत्थर लेकर उसका छोटा सा सर पीछे की तरफ खींचकर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जब तक वो मर नहीं गया और उसका ऊन उसी के लहू में बिक गया और वो अपने ही लहू में लोटपोट हुआ। ये एक अलामत थी। लेकिन उस दिन वहाँ कलवरी पर इस जहान का बरा नहीं बल्कि वो खुदा का बरा था जो मर रहा था और अपने ही लहू में लौट रहा था। वो मारा पीटा और घायल किया गया और उस पर थूका गया और जोर से उसे मारा गया और उसे थप्पड़ मारे गए और इस जहान की तरफ से सब कुछ किया गया और उसके बालों से लहू टपक रहा था। जब हाबल का बरा मरा तो वो एक जुबान बोलते हुए मर गया जिसे हाबल नहीं समझ सका था। वो चिल्ला रहा था और जब खुदा का बरा उस दिन कलवरी पर मुआ तो वो भी एक जुबान बोला जिसे कोई ना समझ सका, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये खुदा का बर्रा था जो घायल किया गया और टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। ये वही बर्रा था जो हाबल के जहन में था जब उसने औरत की माऊदा नस्ल को देखा था। ये वो बर्रा था जिसे दानियल ने देखा था, जो बगैर हाथ लगाए चट्टान से काटा गया। वो नबी के लिए पहियों के बीच का पहिया था, और वो सब कुछ जो उन्होंने पहले से देखा था वो उस दिन कलवरी पर पूरा हुआ। ये अजीम काम वहाँ किया गया जिसने शैतान की कमर को तोड़ डाला। पहले हमें तलाश करना चाहिए कि उस दिन का क्या मतलब है। दूसरा, हमें देखना चाहिए कि उस दिन ने हमारे लिए क्या किया। अब देखें उसने हमारे लिए क्या किया है। अब तीसरा, हम देखें कि हमें उस दिन के लिए क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये एक अजीम दिन है, बल्कि सब दिनों से अजीम है। इस दिन गुनाह की कीमत अदा कर दी गई और शैतान की ताकत को तोड़ दिया गया। और अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमें इसके बदले में क्या करना चाहिए, इसके इवज क्या करना चाहिए। जब यीशु उस दिन कलवरी पर मुआ तो उसने हमारे गुनाहों की कीमत अदा कर दी, और फक्त कीमत ही अदा नहीं की बल्कि हमारे लिए रास्ता भी खोल दिया ताकि हम उसकी पैरवी कर सकें, क्योंकि हम गिरे हुए आदम की तरह थे जो बचाए गए हैं। जैसे कि रूह ने आदम की रहनुमाई की, पहले आदम की रहनुमाई रूह ने की ताकि वो सारी फितरत को संभाले, फिर हम दूसरा आदम यानी जमीनी इंसान जो मसीह के वसीले उस दिन कलवरी पर बचाया गया उसकी पैरवी कर सके। अब जब वो कलवरी पर मुआ तो उसने एक रास्ता बना दिया, उसने रूह दिया यानी पाक रूह जिसे उसने वापस जमीन पर भेजा, जिसके वसीले मैं और आप जिंदा रह सकते हैं। कलवरी का हमारे लिए यही मतलब है कि हम उसकी पैरवी करें। पहले इस पर गौर करें और देखें कि उसने हमारे लिए क्या किया है और इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। मुझे और आपको क्या करना चाहिए? अब आप ये कहते हैं, ठीक है, मैं इसको सराहता हूँ, ये बहुत अच्छा है, मगर हमें तो इसे कबूल करना चाहिए, और इसको कबूल करने के लिए उसकी शख्सियत को कबूल करना चाहिए यानी मसीह को अपने दिल से कबूल करना चाहिए। फिर हम गुनाह से आजाद हैं, फिर हमारे ऊपर गुनाह की बेड़ियाँ लटकी हुई नहीं है, बिल्कुल नहीं। खुदा की नज़र में हम ऐसे हैं जैसे हमने कभी गुनाह किया ही नहीं। कामल कुर्बानी ने हमें कामिल कर दिया है, क्योंकि यीशु ने कहा, कामिल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। फिर कुछ और नहीं करना है क्योंकि हम खुदा की हजूरी में कामिल हैं। अब वहाँ जहाँ हम अपना मकाम खो बैठते हैं वहाँ हम ध्यान नहीं देते, बल्कि हम पीछे मुड़कर ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम क्या थे। और जब तक हम पीछे मुड़कर देखते रहते हैं कि हम क्या थे, तो फिर कुर्बानी हमारे लिए बेअसर है। हो कलीसिया, क्या आप ये नहीं देख सकते? मैं नहीं करूँगा, मैं इस काम के लिए कोशिश नहीं करूँगा, मैं ये नहीं कर सकता और न ही आप कर सकते हैं। हमें ये करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जब तक आप उस पर निगाह लगाए हुए हैं जो आप कर चुके हैं, तो फिर आप खोए हुए हैं। उस पर मत निगाहें लगाएं जो आप कर चुके हैं, उस पर निगाहें लगाएं जो उस दिन कलवरी पर आपके लिए किया गया है। कलवरी पर आपकी कीमत चुका दी गई है और सजा खत्म हो चुकी है। आपके गुनाह चाहे किरमजी हों, बर्फ की मानिंद सफेद हो जाएंगे, किरमजी की तरह लाल हों, ऊन की तरह उजले हो जाएंगे, फिर आप में कोई गुनाह नहीं, आप मुकम्मल तौर पर मुबर्रा हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या क्या किया है और आप क्या करते हैं, आप फिर भी मुबर्रा हैं। जब से आपने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है, आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। कोई भी चीज जो माफ कर दी जाती है उसका मतलब है भूल जाना और बहाल करना। फिर ये क्या करता है? इस हालत के बाद वो पाखरू देता है और पाखरू उसकी पैरवी करता है, और वही करें जो उसने किया है उनके लिए जो पीछे आ रहे हैं। वो बस एक कामिल इंसान था, उसने अपनी जान दे दी और हमारे लिए एक नमूना तैयार कर दिया। अब हमें क्या करना चाहिए? अब पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो है, यीशु कभी भी अपने लिए नहीं जिया, उसकी जिंदगी दूसरों के लिए थी। यही अबदी और कामिल जिंदगी है। जब आप कहते हैं कि आप चर्च जाते हैं तो ये अच्छा है, ये अच्छा काम है जो आप करते हैं, लेकिन जब आप अपनी जिंदगी अपने लिए जीते हैं तो फिर आप में अबदी जिंदगी नहीं है। अबदी जिंदगी दूसरों के लिए जीना है। जब वो खुदा का बर्रा आया तो उसने साबित कर दिया उसमें अबदी जिंदगी थी, और वो जिया, और वो अपने लिए नहीं जिया बल्कि दूसरों के लिए जिया। और आप जब उस दिन को कबूल करते हैं तो आप अबदी जिंदगी पाते हैं। फिर आप अपने लिए नहीं जीते बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। किसी ने कहा, आप कैसे रुक सकते हैं जब कोई आपको ऐसे बुरे नामों से पुकारता है? आप अपने लिए नहीं जीते बल्कि आप दूसरों के लिए जीते हैं ताकि आप उस शख्स को बचा लें। आप बेटे हैं, मगर परेशानी ये है कि कलीसिया भूल चुकी है कि वो बेटे थे। आप एक बेटे हैं और आप मसीह की जगह ले रहे हैं। आप बेटे हैं, बस अपने आप के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिंदा रहें। अच्छा भाई ब्रहनम, मैं इस शख्स के लिए जी सकता हूँ क्योंकि ये शख्स यकीनन एक अच्छा इंसान है। इसका मतलब ये नहीं है उस शख्स के लिए जिए जो आपसे नफरत करता है, उस शख्स के लिए जिए जो आपको कत्ल करना चाहता है। यही था जो उन्होंने उसके साथ किया, उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और वो मर गया ताकि वो उन्हें बचा सके। यही अबदी जिंदगी है। जब आपके दिल में ये है तो फिर आपका चेहरा आसमान की तरफ है। तब फिर आप अपनी चीजों को कुर्बान कर दें, उन्हें दे दें, जैसे भेड़ अपनी ऊन दे देती है। अपनी निगाहें कलवरी पर लगाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको उस मकाम पर ले जाएगा। यही टेबरनेकल है, यही सब लोग हैं जिन्हें ये करना है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या करना है और आपका मकसद क्या है। कलीसिया चर्च में इसलिए नहीं आती कि सिर्फ म्यूजिक बजाए या फक्त गीत गाए। कलीसिया वो जगह है जहाँ असलाह होती है। अदालत खुदा के घर से शुरू होती है। हमें अपने लिए मुर्दा और मसीह के लिए जिंदा होना चाहिए। उसने ये राह निकाली है कि हम अपने आप को उसकी खिदमत के लिए कुर्बान कर दें और उसकी पैरवी करें। अगर हम उसके पीछे चलते हैं फिर हम अपनी जिंदगी उसकी तरह गुजार सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। यीशु ने कहा, और इस बारे में मैं बोला, मैं इसके बारे में आपको चंद हवाले देना चाहता हूँ। गौर से सुने, इसको छोड़े मत। यीशु ने कहा, उस दिन वो लोगों को अलग अलग करेगा जैसे भेड़ों को बकरियों से अलग किया जाता है, और बकरियों से कहेगा बाएं हाथ पर खड़ी हो जाएं, और भेड़ों को कहेगा दाएं हाथ पर खड़ी हो जाएं। और उसने बकरियों से कहा, मुझसे दूर हो जाओ क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं कैद में था और तुमने मेरी खबरगिरी ना की, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी ना पिलाया, मैं बीमार था और तुमने मेरी खबर ना ली, इसलिए मुझसे दूर हो जाओ। और भेड़ों से उसने कहा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं बीमार था, तुमने मेरी खिदमत की। और गौर करें, कलीसिया इसे समझने में नाकाम ना हो, इसे हमेशा अपने दिल में रखें। ये इतने अनजाने में किया गया था, लोगों ने ये सोच समझ के नहीं किया था। कोई शख्स आपसे ये सब कुछ इसलिए करता है कि उस पर ये करना फर्ज है। कोई शख्स आपको इसलिए खाना खिलाता है कि उस पर ये फर्ज है, तो ये खुदगर्जी है। ये तो आपका जीवन होना चाहिए, ये तो आपका अमल होना चाहिए। भेड़ों के लिए इतना हैरान कुन था कि उन्होंने कहा, खुदावंद कब तू भूखा था और हमने तुझे खाना खिलाया, कब तू भूखा था और हमने तुझे खाना खिलाया, कब तू नंगा था और हमने तुझे कपड़ा पहनाया, कब तू प्यासा था और हमने तुझे पानी पिलाया, कब तू बीमार था और हमने तेरी खिदमत की। ये तो खुद ब खुद मोहब्बत में होता रहा। बस ये तो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। ऐ खुदा, लोग देखें कि कलवरी ने खुद ब खुद हमारे लिए क्या किया है। खुदावन तू कब था, हम तो ये नहीं जानते। देखे यीशु ने मुड़कर क्या कहा, जब तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया तो मेरे साथ ही किया। बेगर्ज जिंदगी, कोई दूसरा ख्याल नहीं, इसके बारे में कोई फिक्र नहीं, क्योंकि आप दुनिया की चीजों की तरफ से मुर्दा हैं, मगर मसीह में जिंदा हैं और ऐसी शाहराह पर चल रहे हैं जहां ये चीजें खुद ब खुद होती हैं और आप करते रहते हैं। ये नहीं कहते ठीक है अब खुदावन की मर्जी हुई और खुदावन ने चाहा तो मैं ये करूंगा। ये ऐसा नहीं है। आप तो उसका हिस्सा हैं और उसका रूह आप में है और आप वैसे ही अमल करते हैं जैसे उसने किए हैं। हो क्या आप ये समझ गए? एक ऐसी भी राह है जो इंसान को सीधी लगती है मगर उसकी इंतहा में मौत है। वो सब नहीं जो मुझे ए खुदावंद कहते हैं दाखिल होंगे, बल्कि वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं अपने दिल से अपनी मर्जी से। अब उस दिन कलवरी पर दाम चुका दिया गया है, इसलिए हम वैसे हो सकते हैं। ये मत कहें, आप जानते हैं उस बेवा जोन्स के बारे में, एक मर्तबा उसका कोयला खत्म हो गया था और मैंने उसे कोयला खरीद दिया। मैं आपको बताता हूँ, मैंने देखा है कि भाई को कपड़ों की जरूरत थी और मैंने जाकर कपड़े खरीद दिए और उस भाई को दे दिए। खुदा की तारीफ हो, मैं एक मसीही हूँ। ओ मेरे खुदाया, आप खुद गर्ज गरीब और कम वक्त इंसान हैं। आप एक रयाकार हैं। जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने और जो तेरा बायां हाथ करता है उसे दाहिना हाथ ना जाने। आप खुद ब खुद मसीह में इतने मर गए हैं कि जो कुछ भी आप करते हैं ये आपकी फितरत है, ये आपका सिंगार है, ये आपको किसी भी तरह करना है। ये तो आपके अंदर एक जिंदगी है जो जी रही है। आप मुकम्मल तौर से रूह में जीते हैं और रूह आप में बसा हुआ है। ओ क्या आप उस मुबारक रूह की जिंदगी को महसूस नहीं करते? अब मैं जिंदा ना रहा, पालूस कहता है, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है और ये खुद ब खुद है। ठीक है भाई ब्रहनम, मैं आपको बताता हूँ, हम मसीही हैं और हम इन लोगों की मदद करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं। ओ मेरे खुदाया, आपको शर्म आनी चाहिए, ये मसीहत नहीं है। मसीहत तो फक्त बिला इरादे का नाम है, ये होना ही है और आप सब कुछ भूल जाते हैं। ये मैं नहीं हूँ, जाएं और ये करें। मसीह ने अपनी सारी जिंदगी खुदा के हवाले कर दी। उसने अपने आप को एक सरकारी खादम की तरह लोगों की खिदमत के लिए सर्व कर दिया। उसने अपनी जिंदगी मुफ्त में दे दी। उसने ये ऐसे नहीं किया, उसने ये कुटते हुए नहीं किया, उसने ये नहीं कहा अब ए भाइयों आप सबको ये सोचना चाहिए क्योंकि मैं आप सबके लिए मरने आया हूँ। उसने इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। वो मर गया क्योंकि खुदा उसमें था, खुदा आप में है, खुदा मुझ में है और यही वजह है कि हम एक दूसरे का ख्याल करते हैं। एक तरफ बेड़े थी, बाई जानिब से किसी ने कहा ठीक है खुदावन मैंने तेरे लिए ये किया है और खुदावन मैंने तेरे लिए वो किया है। वो उनसे कह देगा ए बदकारो मेरी नजर से दूर हो जाओ, मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। काश कलीसिया कभी इन बुनियादी असूलों पर आ सके। और ये वो नहीं है जो आप करने की कोशिश करते हैं, बल्कि ये वो है जो खुद ब खुद आप से होता है। ये कुछ है जो आप में पैदा हो गया है। मेरे पेंटिकॉस्टल दोस्तों, मुझे माफ करना, मैं भी पेंटिकॉस्टल हूँ, मगर मेरे पेंटिकॉस्टल भाई इस मकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ एक तेज म्यूजिक होना चाहिए, कुछ ढोल बजाने वाले, कुछ तालियां बजाने वाले और कुछ दफ बजाने वाले होने चाहिए ताकि शोर शराबा हो। ये फक्त जज्बात हैं। वो जंग में जाने से पहले ढोल बजाते हैं, वो लोगों को जंग के जज्बात में ले आते हैं। मैं संगीत पर ईमान रखता हूँ, मैं तालियां बजाने पर ईमान रखता हूँ, मैं इन सब बातों पर ईमान रखता हूँ। ये बिल्कुल सच है, हमें ये करना चाहिए, लेकिन आपने एक अजीम चीज अधूरी छोड़ दी है और वो है अपने आप को कुर्बान करने वाली जिंदगी जो खुद ब खुद सब कुछ ठीक करती है, जो अच्छा होता है, जो साबित करती है कि खुदा आप में रहता है। बस वो इस बारे में बिना सोचे समझे करते हैं, बस इस तरह जीते हैं। फिर देखें क्या हो रहा है, आप फक्त आप नहीं बल्कि आप शाहरा पर चल रहे हैं। यही कुछ है जो कलवरी ने आपके लिए किया कि उस दिन शाहरा को आपके लिए खोल दिया है। देखें अब याद रखें, आप आधी बकरी और आधी भेड़ नहीं हो सकते, ये मिक्स नहीं हो सकती। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, हाँ क्या आप जानते हैं हमारे ग्रो में एक ऐसी तंजीम है, हम गरीबों की मदद करते हैं, हम ये करते हैं। ये ठीक है, लेकिन इस तरह तो आप अपने आगे नरसिंगा बजाते हैं। आपको ये नहीं करना चाहिए। यीशु ने कहा, तू अपनी खैरात पोशीदगी में कर। बस खुद ब खुद आप में कुछ होना चाहिए। ये पीने के लिए पानी हासिल करने से बढ़कर है। अगर आप प्यासे हैं, तो दूसरे प्यासे के बारे में भी ऐसा ही सोचें। आप जैसे अपनी जरूरत के बारे में सोचते हैं, वैसे ही दूसरे के बारे में सोचें, और उस पर आप ध्यान नहीं देते, फक्त जी रहे हैं। अब देखें, आप आधी बकरी और आधी भेड़ नहीं हो सकते। इसलिए अगर आप ये कहते हैं, ठीक है, हमारी कलीसिया एक तंजीम है, हम गरीबों की मदद करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं और दूसरे काम करते हैं, अगर आप ये लोगों के साथ बेलोस करते हैं, तो मसीह की जिंदगी आप में है, वरना आप ये सब कुछ बिल्कुल बेफायदा कर रहे हैं। यीशु, बल्कि पालूस ने कहा, पहले करिन्थियों 13 में, अगर मैं अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं और अपना बदन जलाने को दे दूं, तो इससे मुझे क्या फायदा। अब ये मुश्किल काम है, लेकिन ये सच है, मगर आपको ये काम करना ही होगा। जाने के कलवरी ने आपके लिए क्या किया है। हम कलवरी की तरफ देखकर कहते हैं, ओ हाँ, ये बहुत अच्छा है। ये ऐसे नहीं है कि खुदा का बेटा सिर्फ कलवरी पर मसलूब हो गया है, बल्कि हर खुदा के बेटे को कलवरी पर मसलूब होना है। उसके पास कलवरी होनी चाहिए। आपके पास भी वो कलवरी का दिन होना चाहिए। मुझे भी वही कलवरी का दिन लेना है। ये गुनाह की सजा को खत्म कर देती है। ये मुनाद से हाथ मिलाना नहीं है, ना ही कलीसिया से हाथ मिलाना है, और ना ही किसी लेटर के साथ आना है, और ना ही किसी ओहदे के साथ आना है। ये तो नया जन्म लेकर आना है। उसने कभी कोई लेटर नहीं दिया, उसने कभी कोई ओहदा नहीं दिया, बल्कि उसने जन्म दिया है। इस तरह हम आते हैं, फिर उस दिन से हम खुद ब खुद मसीही जिंदगी गुजारते हैं। अब एक और बात, आधी बकरी आधी भेड़, ऐसा कुछ नहीं होता। आप आधी बकरी या आधी भेड़ नहीं हो सकते हैं। आप या तो बकरी हैं या फिर भेड़ हैं। आप अगर फक्त अच्छी बातें कह रहे हैं और सोचते हैं कि आप इनके वसीले बच सकते हैं, तो ये तो शरीयत ने दिया है, तो फिर आपकी जिंदगी में कलवरी का दिन नहीं होगा। लेकिन कलवरी का दिन लेने से हम इसमें दाखिल हुए। हम चर्च मेंबर नहीं हैं, बल्कि खुदा के बेटे और बेटियां हैं। यही कलवरी का दिन था। यही आपके लिए कलवरी का मतलब है, ताकि आप भी उसकी पैरवी कर सकें और यीशु की तरह अमल कर सकें। अब दरिया एक ही वक्त में ऊपर और नीचे नहीं बहता। दरिया एक ही तरह बहता है और खुदा का रूह भी एक ही तरह चलता है। ये अपने साथ दूसरी चीजों की मिलावट नहीं करता, बल्कि एक ही तरह चलता है। यीशु पर गौर करें। अब खत्म कर रहा हूँ। यीशु ने कहा, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, बल्कि तुम इससे भी बढ़कर करोगे, क्योंकि मैं अपने बाप के पास जाता हूँ। मैं यहाँ ये सब कुछ सिर्फ कलीसिया से नहीं कह रहा, आप समझते हैं, बल्कि ये पैगामात टेप हो चुके हैं और लाखों लोग पूरी दुनिया में इन्हें सुनेंगे। अब मैं तनकीद करने वालों को इस सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने बताया था कि वो कहते हैं, आप क्यों बाइबल पर ईमान रखते हैं। मैं कहता हूँ, यीशु ने कहा, ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, बल्कि तुम इनसे बढ़कर करोगे, क्योंकि मैं अपने बाप के पास जाता हूँ। कितना बुरा आप सोचते हैं जनाब। दिलों को परखने से आप कितनी दूर चले जाते हैं। जब आप अपनी थियोलॉजी, अपनी अकल और अपने ज़हनी तसव्वुरात से सोचते हैं, मेरे अच्छे दोस्त, आप खोए हुए हैं। क्या आप समझ नहीं सकते कि ये बाइबल रूहानी बातों की तर्जमानी करती है। यीशु ने बाप का शुक्रिया अदा किया। उसने इसे तालीम याफ्ता, चलाक और फहीम और दानिश्वरों से छुपाया, पर बच्चों पर जाहिर करेगा जो भी कलवरी पर आएगा। अब गौर करें, यीशु ने कहा, अब ध्यान दें, उसने इसे कैसे कहा, ये काम जो मैं करता हूँ वो काम अब भी कर रहा है। ये काम जो मैं अब कर रहा हूँ, बीमारों को शिफा देना, मुर्दों को जिंदा करना और अंधों की आंखें खोलना, ये काम तुम भी करोगे। अगर तुम मुझ पर ईमान रखोगे तो ये काम तुम भी करोगे, और आप ये काम कर रहे हैं, बल्कि तुम इनसे भी बढ़कर करोगे, क्योंकि मैं अपने बाप के पास जाता हूँ। थोड़ी देर बाकी है, फिर दुनिया मुझे ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखोगे। کیونکہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر ہوں گا. میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجے، یعنی روح القدس، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی مگر تم اسے حاصل کر سکتے ہو. اب غور کریں، بڑے بڑے کام، یہ قوت کلیسیا میں صرف بیماروں کو دعا سے شفا دینے یا بدروحے نکالنے کے لیے صرف نہیں دی گئی تھی بلکہ ایمانداروں کو ابدی زندگی تک لانے کے لیے دی گئی تھی. روح القدس نیچے آیا اور کلیسیا کے ہاتھوں میں دے دیا گیا تاکہ زندگی ظاہر ہو. یہی کلوری کا مطلب ہے. اتنا نیچے آ گیا، حقیر آدمیوں اور عورتوں کو لے لیا اور انہیں اتنا بلند کر دیا کہ وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں، بیماروں کو شفا دیں اور ابدی زندگی کو ظاہر کریں جو روح القدس کی تابے داری کرنے سے ایمانداروں کو ملی ہے. وہ آدمی جو کبھی غیر ایماندار تھے مگر ایماندار بن گئے اور ابدی زندگی میں شامل ہو گئے. یہ کتنا بڑا کام ہے کسی کو کہنا یہ بیمار عورت یہاں پڑی ہوئی ہے، میں ایمان سے اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں اور یہ شفا پا جائے گی. یہ بڑا کام ہے اور یہ کام وہ اس وقت بھی کر رہا تھا، لیکن اس نے کہا تم اس سے بھی بڑے کام کرو گے، میں تمہیں قوت دوں گا جو اسے تھوڑی دیر کے لیے نہیں اٹھائے گی بلکہ اسے ابدی زندگی دے دے گی جو کہ ابد تک ہوگی. غریب، اندھے اور خوار لوگوں، تم اسے کیسے نظر انداز کر سکتے ہو؟ کیا آپ نہیں دیکھ سکتے کہ بڑے کام کیا ہیں؟ سب سے بڑا کام جو کبھی ہوا ہے وہ ہے لوگوں کو ابدی زندگی میں شامل کرنا. ابدی زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی جو وہ جیا، وہ زندگی جو اس میں تھی، جس میں دوسروں کو بھی شامل کیا گیا. کیا کوئی انسان یہ کر سکتا ہے؟ خدا کا بیٹا ہی یہ کر سکتا ہے. یسو نے کہا جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جن کے تم قائم رکھو گے وہ قائم رہیں گے. اب یہاں پر کیتھولک کلیسیا اور دوسرے بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں. یہ ایسے نہیں تھا. انہوں نے بائبل میں گناہوں کی معافی کے لیے کیا کیا؟ پترس نے اس سوال کا جواب پینتیکوس کے دن دیا جب لوگوں نے کہا ہم نجات پانے کے لیے کیا کریں، ہم اس نجات کو جو آپ کے پاس ہے کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس نے نسخہ بتا دیا. اس نے انہیں بتایا کہ کیا کرنا ہے. اس نے کہا تم میں سے ہر ایک خدا سے توبہ کرے اور یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لے. کس لیے؟ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے. یہ ہیں بڑے بڑے کام. آج صبح آپ میں سے جتنے بھی مناد ہیں اور آپ جتنے بھی ٹیپ سن رہے ہیں، میرے الفاظ سنیں. کیا آج صبح آپ کلوری پر جانے کی خواہش کرتے ہیں تاکہ آپ دیکھیں کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کیا ہے اور آپ اپنے تنظیمی عقیدے بھول کر انجیل کی منادی کریں؟ ہللویہ! اب یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ گناہوں کی معافی اور توبہ کی منادی اسی کے نام سے یروشلم سے شروع کر کے تمام دنیا میں کی جائے گی. ہللویہ! جلال ہو! یہاں ہیں آپ. کلوری آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ اس دن نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا اس نے آپ کو علم الہیات سے بھر دیا ہے؟ کیا اس نے آپ کو گھمنڈ سے بھر دیا ہے؟ یا کیا اس نے آپ کو قیمت سے خریدا ہے تاکہ آپ مسیحی بن جائیں؟ ہللویہ! گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. تم اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. آپ دیکھیں آپ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں. اس سے بھی بڑے کام گناہوں کی معافی ہے یسوع مسیح کے نام میں. لیکن عقیدوں اور تنظیموں اور ایسی ہی اور چیزوں نے آپ کو ایک مقام پر باندھ کے رکھ دیا ہے اور آپ دنیا داری کی خدمت میں مصروف ہیں. مجھے کوئی بھی مرد یا عورت دکھائیں جو کلوری پر آیا ہو اور پھر بڑا بول بولے یا بڑا بننے کی کوشش کرے. مجھے بتائیں کہاں آپ کلوری کی ٹھیک صورت اجالے میں دیکھ سکتے ہیں جو اس دن کلوری پر ہوا. آپ کیسے اپنے اس دن کو اس کلوری پر رکھ کر گھمنڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے ایک تنظیم کے لیے کٹ پتلی بن کر انسانی عقیدوں اور تعلیم کی منادی کر سکتے ہیں؟ یہ کیوں آپ کو خدا کے کلام کے لیے فروتن نہیں بنا دیتے؟ اگر آپ کبھی کلوری پر جائیں گے تو وہاں سے فروتن بن کر آئیں گے. आप कैसे अपने गृह में अपनी टोपी में पंख लगाकर बड़ा बनना चाहेंगे, जबकि खुदा के बेटे ने अपने आप को फरोतन बना लिया, उसका बदन छेदा गया, चेहरे पर थूका गया, बदनाम किया गया और रुसवा किया गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए और उसे सारी दुनिया के सामने मसलूब कर दिया। शर्म की भी तहकीर की गई। कैसे आप कलवरी पर जाकर उससे जैसा वो था कुछ मुख्तलिफ बनकर आ सकते हैं? वहाँ शर्म की भी तहकीर की गई। हो, आप कहते हैं वो मुझे ठोकर मार कर निकाल देंगे। उन्हें ठोकर मारने दें, अपने दिन को कलवरी पर लाएं, तो खुदा अपना राह आपके साथ ले लेगा। मैं ये दोबारा दोहराता हूँ, अपने दिन को कलवरी पर लाएं, तो खुदा अपना राह आपके साथ ले लेगा। आए हम दुआ करें।
लॉर्ड ओ गॉड,
ऐ खुदावंद, खुदा अब हम सबको कलवरी पर ले चल, ताकि हम अपने आप से अलग हो जाएं। खुदावंद, इंसानों का डर निकाल दे कि कौन क्या कहेगा। क्यों? सारा जमाना उस पर हंसा और उसका मजाक उड़ाया गया, मगर वो मरते दम तक फरमा बरदार रहा। वो रुसवाई में भी ताबेदार रहा, वो वफाकी हुकूमत का भी ताबेदार रहा। हम जानते हैं जब शैतान ने इस जमीन को जरब लगाया तो वो इस जमीन पर हुकूमत करने और इख्तियार रखने वाला बन गया। इस बात की गवाही उसने खुदावंद के सामने दी और कहा, ये सल्तनतें मेरी हैं और मैं जो चाहूं इनके साथ करता हूं। और हम ये जानते हैं उस दिन से आज तक ये दुनिया लानत के नीचे है और वही इस पर हुक्मरानी कर रहा है जिसके वसीले ये लानती हुई। लेकिन खुदा, ऐ खुदा, हम एक ऐसी बादशाही की खिदमत करते हैं जिस पर लानत नहीं है। खुदा बाप, ये कितना शानदार है कि तूने आज दुनिया को ये अजीम तस्वीर दिखा दी है। ये अजीम तस्वीरें हैं जैसे कि 10 हुक्म और वगैरह वगैरह, ताकि मर्द और औरतें आएं और देखें, और ये कलीसिया के सामने छुपाई नहीं जाएंगी बल्कि उन्हें देखने के लिए दी जाएंगी। खुदा के तरीके को दुनिया रद्द कर देती है, क्योंकि हम ऐसे हैं। हम रूस जाते हैं जो कि दैरियों के कंट्रोल में है। हम इस दुनिया में रहते हैं मगर हम इस दुनिया के नहीं हैं। हम कलवरी पर चले गए हैं और हमने अपने आप को खुदा की बादशाही और उसके साथ एक होने के लिए मसलूब कर लिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, हमने खुदा के उन थोड़े से रद्द किए हुए लोगों के साथ अपनी राह ले ली है। हम जी उठने में चल रहे हैं और हम ईमान रखते हैं कि ये जल्द आ रहा है। खुदावंत, जब हम उस जी उठने की बादशाही को लेंगे और इस दुनिया पर हुकूमत करेंगे जिसे दानियल ने पहले से देखा और सारी दुनिया को भूसा कहा और हवा उसको उड़ा ले गई, जैसे गर्मियों में गंदम से भूसा निकाला जाता है। लेकिन वो पहाड़, बल्कि वो पत्थर जो उस चट्टान से निकल आया जिसने सारी जमीन को डांप लिया, वो पत्थर आएगा। ऐ खुदा, हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। आए हम अपनी खुदी का इनकार करें और अपनी सलीब हर रोज उठाएं और मसीह के लिए जिएं और दूसरों के लिए जिएं। खुदावंद, ये बख्श दे। यहाँ आज सब कुछ लोग हैं जो उसको बतौरे निजात दहिंदा नहीं जानते, और अगर वो चाहते हों कि उन्हें दुआ में याद रखा जाए और आपका दिन कलवरी का दिन हो जाए, और क्या आप अपने हाथ उठाकर ये कहेंगे, भाई ब्रहनम मेरे लिए दुआ करें, मैं उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करना चाहता हूँ। खुदा आपको बरकत दे। नौजवान, कोई और है? खुदा आपको बरकत दे मेरे भाई। आप जो पीछे बैठे हुए हैं, कुछ भी हो, मैं उसे जानना चाहता हूँ, तो कहें, मैं उसे जानना चाहता हूँ, मैं अपना दिन कलवरी का दिन बनाना चाहता हूँ। मैं बीमार और थका हुआ हूँ, क्या मुझे ऐसे ही बेफायदा घूमते रहना चाहिए, बजाय उस काम के जिसके लिए मैं पैदा हुआ? मैं खुदा का बेटा होने के लिए पैदा हुआ हूँ, मगर मैंने तो दुनिया की चीजों को पकड़ रखा है। ऐ खुदा, मुझे आज मसलूब होने दे, आज मुझे और मेरे ख्यालों को मसलूब होने दे, ताकि मैं मसीह के साथ जी सकूं और दूसरों के लिए भी जीऊं। इससे कता नजर कि वो मेरे साथ क्या करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे दुख देते हैं और मेरे खिलाफ बुरी बातें करते हैं, मगर मैं फरोतनी और हलीमी के साथ चलना चाहता हूं, जैसे बड़ा चला, जैसे उसने किया, और किसी दिन दोबारा जी उठने का उसने मुझसे वादा किया है। उस आखिरी दिन में मैं उसका मुंतजर हूँ। क्या कुछ और हाथ उठेंगे वहाँ पीछे? खुदा आपको बरकत दे, और आपको भी। ठीक है, कुछ और? खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे। दुआ से पहले कुछ और हैं? हमारे आसमानी बाप, ये ईदे पेंतिकोस के दिन कहा गया था जब पत्रस ने मुनादी की थी। जितने ईमान लाते थे वो कलीसिया में शामिल हो जाते थे। वो यकीनन अपने पूरे दिल से ईमान लाए थे। ये लोग भी अपने हाथों को उठाए हुए हैं और मैं ईमान रखता हूँ कि ये भी अपने पूरे दिल से ईमान रखते हैं। और अगर ये चाहते हैं तो पानी का तालाब यहाँ इंतजार कर रहा है जो अपने गुनाहों को धोना चाहते हैं। और यहाँ ऐसा शख्स मौजूद है जो इनको उस नाम में बपतिस्मा दे सकता है, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले हम निजात पा सकें। क्योंकि मैं ये हवाला पहले ही पेश कर चुका हूँ कि तोबा और गुनाहों की माफी यरूशलम से शुरू करके पूरी दुनिया में उसके नाम से की जाएगी। और यरूशलम में जब तोबा और गुनाहों की माफी की मुनादी की गई और रसूल ने उन्हें कलाम सुनाया और उनसे कहा पहले तोबा करो और फिर यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, ये है मुनाद का काम जो उसे करना चाहिए। लोग तोबा करें और मुनाद उनके गुनाहों की माफी के लिए उन्हें बपतिस्मा दे। जिनके गुनाह तुम माफ करते हो उनके माफ हो जाते हैं और जिनके गुनाह तुम कायम रखते हो उनके कायम रहते हैं। ऐ बाप, कैसे दुनिया ने अपनी बातों को इसमें शामिल कर दिया है जो ये मानते हैं। क्यों ये सादा अंजील पर ईमान नहीं रखते और ये कलाम में कुछ मुतबादल चाहते हैं। झूठा नाम, झूठा बपतिस्मा, झूठा पाकरू का बपतिस्मा, खादमों से हाथ मिलाना और बाप बेटे और रुल कुछ के अलकाब इस्तेमाल करना, ये कलाम में नहीं है। ये दस्तावेज रोमी आदमियों ने तैयार की थी, ना कि ये मसीही तालीम थी जो बाइबल में मौजूद है। गुनाहों की माफी अलकाब में नहीं है, गुनाहों की माफी यीशु मसीह के नाम में है। अब ऐ बाप, हम जानते हैं ये हर दिल अजीज नहीं है, तेरे रास्ते हमेशा ऐसे ही रास्ते हैं, लेकिन होने दे कि आज ये मर्द और औरतें उस दिन को जानें कि उस दिन कलवरी पर क्या हुआ था, जहां उस दिन यीशु की तहकीर की गई और नंगा करके जिल्लत की गई, उसे मारा कूटा गया और उस पर थूका गया और पूरी दुनिया की तरफ से और कलीसिया की तरफ से उसका मजाक उड़ाया गया, जबकि उन लोगों की तरफ से उसे प्यार मिलना चाहिए था। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी उसने अपना मुंह ना खोला, वो चलता गया और उन लोगों के लिए जो उसका मजाक उड़ा रहे थे मर गया। ऐ खुदा, आज सुबह हमें कलवरी पर ले चल। और अगर ये कहते हैं हम दीवाने हैं और कहते हैं जो कलाम हमने सुना है गलत है या जो कुछ भी ये कहना चाहते हैं, ऐ खुदा, लेकिन ये खुदा की हजूरी में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि ये कलाम गलत है। ये बाइबल से अपने गुनाहों को नहीं छुपा सकते, बल्कि बाइबल तो इनके गुनाहों को और बेएतकादी को जाहिर करती है। ये भी दूसरे लोगों की तरह शोहरत पाना चाहते हैं। इन्हें आज सुबह कलवरी पर आने की तौफीक बख्श दे। यरूशलम से शुरू करके तोबा और गुनाहों की माफी की मुनादी सब कौमों में उसके नाम से की जाएगी। यरूशलम से शुरू करके इन्हें भी उसी मसलूबियत के गहरे गांव में जाने दे। थूका जाना और मजाक बनना और हर एक ना हक बात जो भी वो मजहबी मुलहद कलीसियाओं को फाड़ने के लिए कह सकते हैं या वो सब जो वो करना चाहते हैं बर्दाश्त करने दे। काश हम आज सुबह खुदावंद उस तहकीर की जो खुदावंद तेरी की गई कुछ बर्दाश्त कर सकें। काश हम वैसे चलें जैसे रसूल चलते थे, ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि अपने पूरे दिल से खुदावंद की खिदमत करें। ऐ बाप, ये बख्श दे। अब जितने बीमार और मुसीबत ज़दा इस दुआया कतार में आ रहे हैं इन्हें शिफा बख्श दे। काश जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं वो ठीक अभी अपने दिलों में तोबा कर लें। काश वो जो पीछे काफी देर से खड़े हैं जल्दी से पानी की तरफ चले जाएं और अपने गुनाहों की माफी उस कुर्बानी वाले नाम यानी खुदा के बेटे। यीशु मसीह के नाम में हासिल करें। आमीन। सलीब के नीचे जहां मेरा मुनज्जिम हुआ, जिन गुनाहों से मैं चिल्लाता था मुबर्रा कर दिया, मेरे दिल पर वो लहू लग गया। उसको जलाल, उसके नाम को जलाल मिले। हो उसके नाम को जलाल मिले। हो मेरे दिल पर लहू लग गया, उसके नाम को जलाल मिले। मैं कितनी अजीब तरह गुनाह से बच गया, कैसे? यीशु कितना प्यारा अंदर रहता है, स्लीप के नीचे जहां वो उसमें एक बने मैं। हो उसके नाम को जलाल मिले। उसके नाम को जलाल मिले। उसके नाम को जलाल मिले। बेश कीमत नाम। ओ वहां मेरे दिल पर वो लहू लग गया, उसको जलाल। ये आपके लिए फक्त कुछ करना नहीं है, बल्कि आपको दौड़ के लिए निकलना है और जिंदगी, बल्कि अबदी जिंदगी की उम्मीद आप में उजागर करना है। मसीह के लिए मसलूब होना क्या है? दूसरे लोगों के लिए जीना। किस किस्म के लोगों के लिए जीना? उनके लिए जो आपसे नफरत करते हैं, उनके लिए जो आपको पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए जो आपका मजाक उड़ाते हैं। उनके साथ जिए, उनके साथ रहें, उनसे प्यार करें, अपने सताने वालों के लिए दुआ करें और उनके लिए भी जो मेरे नाम की खातिर तुम्हें बुरा कहते हैं, क्योंकि जो नबी तुमसे पहले आए उन्होंने उनके साथ भी ऐसा ही किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का पैगाम इस कलीसिया की मदद करेगा, ताकि आप देख सकें कि हमें कलवरी की जरूरत है और हमें मसलूब होने की जरूरत है। अब क्या सब कुछ कर दिया गया है? सब कुछ कर दिया गया है। बहन जो व्हीलचेयर पर बैठी है और आप जो बीमार और मुसीबत ज्यादा लोग हैं, आपके लिए सब कुछ अदा कर दिया गया है। आपके करने के लिए फक्त एक ही काम बचा है कि आप ईमान रखें और शिफा आपकी है। आप इसे कबूल करें, आप शिफा पा जाएंगे। याद रखें, अब ये क्या है? आप दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी कर सकते हैं, बीमारों को शिफा दे सकते हैं और अबदी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। ये कितना बड़ा काम होगा उस आदमी के लिए जो यहाँ कैंसर से या रसोली से या किसी और बीमारी से मर रहा है। हम यीशु को देख चुके हैं और कई मर्तबा उसकी बेशबहा बरकत को और मर्दों जन को शिफा पाते हुए देख चुके हैं, और हजारों और लाखों मर्तबा पूरी दुनिया के चौगिर्द ऐसे नाकाबले यकीन केस देख चुके हैं। देखें, लोग चार पाइयों और स्ट्रेचर से उठ खड़े हुए, वो जिन्हें मोलक कैंसर खा रहा था, आज वो लोग बिल्कुल सेहतयाब हैं। ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, बल्कि इनसे भी बड़े काम करोगे, इनसे बड़े। ठीक है, क्या मैंने यीशु के नाम में इनकी जिंदगियों में इजाफा कर दिया, ताकि इनकी फानी जिंदगी के कुछ दिन और बढ़ जाएं? लेकिन तुम इनसे भी बड़े काम करोगे, तुम मेरे नाम से इन्हें अबदी जिंदगी दोगे। क्यों आप इस बेशकीमत नाम से शर्माएंगे? क्यों लोग इस नाम से पीछे हटना और दूर रहना चाहेंगे? यकीनन अबलीस ही ऐसा कर सकता है। यरूशलम से शुरू करके सब कौमों में तोबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। यहाँ से पहला पैगाम जारी हुआ, क्या ये सच है? यरूशलम से शुरू करके तोबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। अब पहले हम वो करेंगे जो उसने किया, बीमारों की शिफा के लिए दुआ करेंगे। अगली बात, फिर हम उस अजीम बख्शीश को पाएंगे। यहाँ पीछे पानी तैयार है और जो कोई बपतिस्मा लेना चाहता है, यहाँ बहनों और भाइयों के लिए लबास मौजूद हैं। अपने गुनाहों की माफी के लिए तैयार हो जाएं। और याद रखें, आप फक्त अपने गुनाहों की माफी बाइबल की तालीम के मुताबिक ही हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले हम निजात पा सकें। पालूस कुछ लोगों से मिला जो पहले ही बपतिस्मा याफ्ता थे। वो नारे लगा रहे थे कि वो फतेहमंद हैं। पालूस ने कहा, तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, योहन्ना का। पालूस ने कहा, योहन्ना तोबा का बपतिस्मा देता था। अब इसको समझें, तोबा का, ना कि गुनाहों की माफी का। कितने इस बात को समझ गए हैं? ना कि गुनाहों की माफी के लिए उन्होंने तोबा का ठीक बपतिस्मा लिया हुआ था। उन्होंने तोबा की हुई थी। जी हाँ जनाब, मैं तोबा कर चुका हूँ, मैं ईमान रखता हूँ, वो आ रहा है। उन्होंने तोबा का बपतिस्मा लिया हुआ था। उन्हें ये कहा गया था खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाओ। और फिर जब उन्होंने ये सुना कि कुर्बानी आ चुकी है, तो उन्होंने दोबारा यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया और फिर वो उसमें शामिल हो गए। और जब उसने उन पर हाथ रखे तो वो रूल कुछ से भर गए और गैर जुबाने बोलने और नबुवत करने लगे। अब आप कैसे इस कलाम को तब्दील कर सकते हैं? आप बाइबल में अपनी उंगली रख कर नए ऐतनामे में कोई ऐसी जगह दिखाएं जहां गुनाहों की माफी के लिए किसी भी शख्स को यीशु मसीह के नाम के अलावा बपतिस्मा दिया गया हो। मुझे बाइबल में कोई एक ऐसी जगह दिखाएं जहां किसी शख्स को बाप, बेटे और रूल कुछ के नाम में बपतिस्मा दिया गया हो। या मेरे सामने तारीख लेकर आएं, मुझे कलीसियाई तारीख में से दिखाएं कहां किसी शख्स को बाप, बेटे और रूल कुछ के नाम में बपतिस्मा दिया गया है जब तक आखिरी रसूल की मौत नहीं हुई और 300 और कुछ सालों के बाद कैथोलिक कलीसिया मुनज्जम नहीं हुई। अब मैं प्री नासियन फादर्स और तमाम तारीख और सब कुछ का मुतालिया कर चुका हूँ, यहाँ तक कि दुनिया की कदीम तरीन मुकद्दस तारीख को भी पढ़ चुका हूँ। हमारे पास ये बड़े मोतबर सबूत मौजूद हैं। आप कैथोलिक कलीसिया की कैथेकिज्म या आर संडे विजिटर्स पढ़ें और उन पर गौर करें। वो कहते हैं कुछ प्रोटेस्टेंट भी निजात पा जाएंगे क्योंकि वो कैथोलिक तालीम को मानते हैं। उनकी बाइबल कहती है बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में है, लेकिन हमने बड़ी संजीदगी से यीशु का नाम निकाल दिया है और उसकी जगह बाप, बेटा और रूल कुछ डाल दिया है और प्रोटेस्टेंट इसे मानते हैं। मुझे एक भी हवाला यीशु नाम के खिलाफ दिखाएं। यहाँ है आप। और अभी तक दुनिया इस तालीम के आगे झुक रही है। क्यों? इसलिए कि ये कभी भी कलवरी तक नहीं गए। यही वजह है लोग इसे कभी भी देख नहीं पाए। वो आपका मजाक उड़ाएंगे और आप पर आवाजें कसेंगे। वो आपको जुनूनी, ओनली जीसस और तमाम बुरे नामों से जो कुछ भी वो कह सकते हैं पुकारेंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो आपको क्या पुकारते हैं? उन्होंने क्या किया? क्या यीशु ने परवाह की कि वो उसे क्या पुकारते हैं? वो मसलूब हो गया। वो खुदा के लिए जिया, फक्त खुदा के लिए। और अगर वही रूह जो उसमें थी आप में है, तो फिर आप वही कुछ करेंगे और उसके नाम की खातिर बर्दाश्त करेंगे। कलाम या काम, बाइबल कहती है जो कुछ भी करते हो वो सब यीशु के नाम में करो और उसी के वसीला से खुदा का शुक्र करो। कहां से आपने ये बुत प्रस्तों की तालीम तसलीस हासिल कर ली है? ये कैथेकिज्म से निकली है, ना कि बाइबल से। लफ्ज तसलीस पदेश से लेकर मुकाशवा तक पूरी बाइबल में नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है। तसलीसी खुदा जैसी कोई चीज नहीं है। खुदा फक्त अकेला खुदा है। वही खुदा है। वो हमेशा से एक ही खुदा है। वो तीन दफातर में काम करता है। मूसा के वक्त में उसने बतौरे बाप काम किया। एक मर्तबा उसने जिस्म में आकर काम किया बतौरे बेटा यीशु की सूरत में। अब वो रूह को उसकी सूरत में काम कर रहा है, लेकिन वो एक ही खुदा है। एक खुदा तीन नामों में नहीं, एक नाम के तीन अलकाब में, तीन दफातर में यीशु मसीह है। हर बात जो कलाम से तजाद है वो बुत प्रस्ती है। और मैंने किसी शख्स से पूछा, मुझे ये दिखाओ, क्या ये नहीं है? ये सच है। मैंने ये कई साल पहले कहा था, काफी सालों के बाद, बल्कि कई सालों के बाद भी किसी आदमी ने इसे नहीं लिया था। अब देखें, क्योंकि ये नहीं हो सकता था, मैंने इसे लिया कि बाइबल अव्वल है और कदीम तारीख ने इसे साबित कर दिखाया है कि ये सच है। और फिर शैतान क्या कर सकता है? मैं ठीक है, बाइबल कहती है वो ऐसा करेंगे। वो कैसे आ सकते हैं जब तक मैं उन्हें खींचता नहीं? यही है फक्त जो मैं जानता हूँ और यही कुछ यीशु ने कहा था। बस ये मैं नहीं कह रहा कैसा होना चाहिए। और अगर मैं ये अपनी तरफ से कहता हूँ और इस पैगाम पर मुनादी करता हूँ, तो मैं आप सबके दरमियान एक घटिया रयाकार हूँगा। ये सच है। मैं तो इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये सच्चाई है और ये जिंदगी है। जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया उसके नाम से, उनमें जिंदगी जारी है। हम उसके नाम से दुआ करते हैं, उसके नाम से मांगते हैं, उसके नाम से मुनादी करते हैं, उसके नाम से बपतिस्मा लेते हैं, उसके नाम से जीते हैं, उसके नाम से मरते हैं, उसके नाम से जी उठते हैं और उसी के नाम से आसमान पर जाएंगे। तमाम आसमानी घराने यीशु के नाम से नामजद हैं। बाइबल यूं फरमाती है, यीशु के नाम से जमीन का हर एक खानदान नामजद है। उसने कहा, मैं अपने बाप के नाम से। आप कहते हैं भाई ये बाप का नाम है? बाप नाम नहीं है, ये लकब है। उसने कहा, मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ और तुम मुझे कबूल नहीं करते। अब वो किस नाम से आया था? ओ यकीनन तुम मुझे कबूल नहीं करते हो। बस यहाँ हैं आप और ये है। जी हाँ, धना और अकल मंदों से ये छुपाया गया। यकीनन ये सच है, और यहाँ हमने किसी दिन मुकाशफा से उस पुरानी कस्बी कलीसिया के बारे में सीखा था जो कि पहली तंजीम है, और फिर बहुत सारे ग्रोह हैं जो उसकी बेटियाँ हैं जो उससे पैदा हुए हैं। उनकी आदतें, उनके काम भी वैसे ही हैं। उसने सब कुछ बाबल से समेटा और इसी तरह उसके साथ साथ रोमन कलीसिया और सारी दुनिया के कलीसिया इतिहाद ने भी यही कुछ किया है। और ये है वो कस्बी जिसने सब कुछ समेट लिया और सबने यही काम किया और एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। लेकिन खुदा की कलीसिया, हालेलुया, एक चुनी और अलग की हुई कलीसिया है। कलीसिया कैसे तामीर हुई, आप ये कैसे जानेंगे? आप किस तरह जान सकते हैं कि ये सच्चाई है जब खुदा आप पर ये जाहिर करे? कैसे हाबल जान पाया कि फल के बदले बर्रा होना चाहिए? ये उस पर जाहिर किया गया था। ईमान ही से हाबल ने काइन से अच्छी कुर्बानी गुजरानी। सूरते तब्दीली के पहाड़ से उतरते हुए यीशु ने कहा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं एलिया, मूसा और वगैरह वगैरह। उसने कहा, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे क्या कहते हो कि मैं क्या हूँ? पत्रस ने कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। उसने कहा, तुमने ये सीखा नहीं? मैं ये बड़ा होने के लिए नहीं कह रहा बल्कि एक नुक्ते पर लाना चाहता हूँ। तुमने ये किसी सेमिनरी से नहीं सीखा और ना ही तुम्हें ये किसी आदमी ने सिखाया है, बल्कि मेरे आसमानी बाप ने ये तुम पर जाहिर किया है। मैं जो हूँ ना कि बाप बेटा रुलकुस, बल्कि मैं यीशु मसीह हूँ। और इस पत्थर पर, किस पत्थर पर? उसी पत्थर पर जिस पर हाबल गया, इस रूहानी मुनकशिफ खुदा की सच्चाई के पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब नहीं आएंगे। ये सच है, वो कोशिश करेंगे पर गालिब नहीं आएंगे, समझे? बस कलवरी पर जाएं और मसलूब हो जाएं, वापिस आएं और खुदावंद के लिए कुछ रुसवाई के लिए तैयार हो जाएं। अब ऐ खुदावंद, हम सब कुछ तुझे सौंप रहे हैं। मैं नहीं जानता इस ग्रोह में से कौन यहाँ है, मेरे पास जानने का कोई जरिया नहीं है खुदावंद, जब तक तू ये जाहिर नहीं करता। और अब ऐ खुदा बाप, मैं तुझसे ये दरखास्त नहीं करता कि तू ये कर, मैं ये बात लोगों पर ही छोड़ता हूँ जो यहाँ मौजूद है। काश आज की सुबह वाकई कलवरी बन जाए और आज सुबह हमारी खुदी और हमारी ख्वाहिशात और हमारी जिंदगी का घुमंड मसलूब हो जाए। काश लोग फ्रोतन बन जाएं और खुशी से खुदावंद के लिए रुसवाई उठाने के लिए तैयार हो जाएं। काश ये हलीमी से चलें। काश ये इस बादशाही में, इस अजीम खुदा की बादशाही में पैदा हो जाएं, जो कि रूहानी बदन है, मसीह का आसमानी बदन जो जमीन पर है, क्योंकि हमने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया है। ऐ खुदावंद, ये बख्श दे, खा ये स्याह, सफेद, बुरे, पीले, मर्द या औरत, गुलाम या आजाद, या ये जो कुछ भी है, हम सब ने एक ही रूह का जाम पिया है। ऐ बाप, ये अता कर कि ये हमारे साथ रहे, ताकि आज सुबह जितने लोग हमारे दरमियान हैं, वो इसे समझ जाएं। तू इनके जेनों को खोल दे, फिर ये दिन इनके लिए नया दिन हो और सूरज इन पर चमके और इंसानी थियोलॉजी की मायूस रोशनी इनसे दूर हो जाए और खुदा की रोशनी इनकी राह को रोशन कर दे और खूबसूरत रोशनी के लिए उन पर्दों को चाक कर दे और फिर ये मुकद्दस शाहरा पर चल सकें और दूसरों के लिए जी सकें जैसे मसीह जिया। अब जब हम दुआया कतार को बुलाते हैं और मैं दुआ करता हूँ कि तू हम सब में से अपने खादमों को मस्सा कर, जैसे ही हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, और बख्श दे कि आज हर एक बीमार शख्स जो इस दुआया कतार में आया है शिफा पा जाए। काश जब ये वापस जाए तो उस बेंगी लड़की की तरह और उस बच्चे की तरह और उस बुजुर्ग खातून की तरह और बाई राइट और दूसरे बहुत से लोगों की तरह जो यहाँ आए थे। खुदावन, वो बीमारियों और परेशानियों में मुब्तला थे और कुछ ऐसी बीमारियाँ भी थी जिनके बारे में डॉक्टरों ने कहा था इलाज मुमकिन नहीं, वो आज यहाँ मौजूद है। ये पिछले हफ्ते की बात है, वो यहाँ मौजूद हैं और आज तंदुरुस्त हैं। ऐ खुदा, काश ये मर्द और औरतें उसी ईमान के साथ इस कतार से गुजरें, ये जानते हुए कि माजी की शिफा के बारे में उनके भी जो ख्यालात और मंसूबे थे उन्हें कलवरी पर मसलूब करने जा रहे हैं। जिस कुवत ने यीशु को कब्र से जिंदा किया, वही तुम्हें जिंदगी देती है, ईमान की अजीम जिंदगी। और फिर इसके फौरन बाद हो सकता है कि बहुत लोग बपतिस्मा लेने के लिए तालाब की तरफ जाएं। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पास सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, जिसमें से हमने बपतिस्मे की इबादत भी और दुआया कतार भी लेनी है। अब हमारे पास दुआया कार्ड्स नहीं है, हमारे पास ये मौजूद हैं, मगर हम उन्हें बड़ी कन्वेंशन में जब वो शुरू होगी इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, ये बाहर मौजूद है, हम इसे टेप में कर चुके हैं। और जहाँ कहीं मैंने कभी जाना हो, ये टेपें वहाँ मुझसे पहले पहुँच जाती हैं। ये निशान बरकत की तरफ इशारा करता है। और ये ख्याल है, जब आप बीमारों के लिए दुआ करें तो वो लोग आपका यकीन करें। मैंने कहा था, लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे। फरिश्ते ने कहा था, तुझे ये निशान दिए जाएंगे और इस तरह वो तेरा यकीन करेंगे। ये निशान पिछले 10 सालों से पूरी दुनिया में मुतहरिक है और एक मर्तबा भी नाकाम नहीं हुआ। इसमें कभी भी नाकामी नहीं हुई। कितने जानते हैं ये सच है? ठीक है, अगर आप इस निशान का यकीन करते हैं तो फिर पैगाम पर भी ईमान रखें। ये सच है, ये इसको जाहिर करता है। और अगर खुदा मुझे कोई पैगाम देता है तो वो भी बिल्कुल इसी तरह कामिल होगा। लेकिन क्या, और क्या मैं आपको कोई गलत बात बताऊंगा? खुदा मुझे ऐसा नहीं करने देगा। नहीं 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 जनाब, मैं आपको सच बताता हूँ। अब आप सब चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए। मेहरबानी से इस कतार वाले उस तरफ वाली कतार में आ जाएं। और अगर आप यहीं रहना चाहते हैं तो ठीक इसी कतार में रहें। और फिर जब हम दुआ करते हैं तो लोगों को यहाँ आने दें। और फिर हम चाहेंगे वो लड़के जो अशर हैं, इन पर नजर रखें। और जैसे ही वो यहाँ से आते हैं और फिर इस तरफ शामिल हो जाते हैं तो हम उन्हें घुमाकर वापस ले जाएं और उन्हें इस तरफ से लाएं, क्योंकि हर एक दुआ के लिए आया है। हो नहीं नहीं, ये नहीं था। ठीक है, आप किसी भी वक्त जाते हो, कोई मसला नहीं, आप उन्हें ला सकते हैं। या आप, मैं ये, आप उसे अभी यहाँ ला सकते हैं या बाद में, जब भी वो चाहती हो, कोई मसला नहीं। अब आए अगले चंद लम्हों के लिए बड़ी खामोशी इख्तियार करें। अब मैं चाहता हूँ कि आप सब सोचें, अब बाइबल ने क्या कहा है? ईमान से की गई दुआ से बीमार शिफा पा जाएगा। कितने जानते हैं ये सच है? कितने जानते हैं कि बाइबल कहती है ईमान लाने वालों के दरमियान ये मुझसे होंगे, ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे। कौन से काम? उसने कहा था, मैं कर सकता हूँ अगर तुम ईमान रखो कि मैं इस लायक हूँ। क्या ये सच है? मेरा सवाल क्या था? लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे। उसने कहा था, इन निशानों की वजह से लोग तेरा यकीन करेंगे। अब अगर आप ईमान रखते हैं और तैयार हैं, तो ये आपकी शिफा की घड़ी है। बस ये वैसे ही है जैसे गुनाह से मखलसी पाना, इसका वादा भी उसी खुदा ने किया है। अब हम यहाँ एक थोड़ी सी बीमार औरत को लेते हैं जो न्यू अल्बानी से आई है और मेदे की तकलीफ में मुब्तला है। अब हम इसके लिए दुआ करने जा रहे हैं। पहली बात, वो अपनी सीट पर बैठी हुई है। अब हर कोई बड़ी खामोशी इख्तियार करे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ भाई मेरी मदद करें। और अब आए हम कुछ लम्हों के लिए दुआ में अपने सरों को झुकाते हैं। अब आसमानी बाप, ये तेरा कलाम है। मैं इसका जिम्मेदार नहीं कि ये इस पर अमल करेंगे या नहीं, लेकिन मैं इसकी मुनादी करने का जिम्मेदार हूँ। इस बात को मद्देनजर रखते हुए और ये जानते हुए कि मैं अब अधेड़ उम्र आदमी हूँ और एक दिन तेरे सामने पेश होऊंगा, मैं अपने पूरे दिल से कलाम की मुनादी करता हूँ, ना के तस्सुब से। और तू जानता है, और अगर मैंने ऐसा किया है तो खुदावंद फिर मुझे भी तौबा की जरूरत है। ए बाप, मैं दुआ करता हूँ कि तू हमारी मदद करे। अब मैं बीमारों के लिए दुआ करने लगा हूँ। काश मेरी दुआओं का तू जवाब दे, ना कि सिर्फ मेरी दुआओं का बल्कि पूरी कलीसिया और इन गरीब लोगों की दुआओं का भी जवाब दे। क्या होता अगर मेरी बीवी यहाँ खड़ी होती? क्या होता अगर वो यहाँ इस व्हील चेयर पर बैठी होती, या मेरी बहन होती, या मेरी माँ होती? ओ खुदा, इन लोगों को शिफा दे। क्या खुदावन तू देगा? इस दुआया कतार में खड़े हुए लोगों को देख, ये दिल की तकलीफ में, कैंसर, रिसोली और तमाम इकसाम की बीमारियों और परेशानियों में मुब्तला है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सैकड़ों यहाँ से शिफा पा चुके हैं। खुदावन ये देखते हैं और इसका यकीन करते हैं, और ये इस दुआया कतार में आ रहे हैं ताकि अपनी शिफा को कबूल करें। अब ये जिंदा पत्थर के पास आ रहे हैं, तेरे खादम के पास नहीं आ रहे, बल्कि तेरे बेटे यस्सु के पास आ रहे हैं, जो कि इस कलीसिया का रहनुमा है और पुरस्रार रूहानी शख्सियत है। और हम अपने आप को तेरे नाम के लिए पेश करते हैं। तूने कहा तुम मेरे नाम से बदरूहों को निकालोगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तू दुआओं का जवाब दे, यस्सु के नाम में, आमीन। अब हर एक शख्स दुआ करे। अब ये आपका हिस्सा है, आप दुआ करें। अब अगर इस खातून की मदद ना की गई तो ये मर जाएगी। कितने भाई स्टेटक्लो को जानते हैं? भाई और बहन स्टेटक्लो को, एक रात मैंने जर्मनी से 3 मरतबा फोन मासूल किया। उनका बेटा मर गया था। उन्होंने कहा, भाई ब्रहनम, हमने आपको खुदा के रूह से मुर्दा जिंदा करते देखा है। वो वहाँ मौजूद थे और उन्होंने ये देखा था, समझे? उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि आप खुदा के नबी हैं और फक्त कलाम सुनाते हैं। मैंने कहा, मैं तब तक कुछ नहीं कहता जब तक वो मेरे मुंह में कुछ नहीं डालता। उन्होंने कहा, जर्मनी आए। मैं फौरन उठ गया और उन्होंने फोन पर कहा, आप जट तैयारे पर जर्मनी आ जाएं। वो 6 घंटों में आपको जर्मनी ला सकता है। एक आर्मी जेट जो मुझे एक मुर्दा बच्चा जिंदा करने जर्मनी ले जाएगा। आर्मी जेट 6 घंटों में मुझे लुइसविल से मेंचन जर्मनी ले जाएगा। मैं गया और घुटनों के बल हो गया और मैंने कहा, ए बाप, मुझे क्या कहना चाहिए, मेरे मुंह में डाल। उसने मुझे जवाब ना दिया। मैं जंगल में चला गया। मैंने कहा, ए बाप, मुझे क्या कहना चाहिए, मेरे मुंह में वो कलाम डाल। क्या मेरा वहाँ जाना फायदेमंद होगा या नहीं? मैं फिर झुक गया और उसने मुझे जवाब ना दिया। मैं चला गया और सारी रात दुआ में गुजारी, खुदावन मेरे मुंह में अपना कलाम डाल। कोई जवाब ना मिला। अगली सुबह मेरी बीवी उठी और जैसे ही वो चली गई, कलाम किया गया। मैं खड़ा हो गया। उसने कहा, इसे मत झिड़कना, ये खुदावंत का हाथ है। मैंने फौरन फोन किया, मैं नहीं आ सकता, नहीं, क्योंकि ये खुदावंत का हाथ है, मुझे मना किया गया है। आप देखें इस झिड़क में कौन सी कुव्वत है। खुदा ने कहा, तू ये मत करना क्योंकि ये खुदावंत का हाथ है। देखें, एक मर्तबा मूसा को भी कुछ करने से मना किया गया था, वो गया और उसने वैसा ही किया। क्या आपको याद है? बस मैं नहीं गया। मैं आपको 4 मुख्तलिफ लोगों के बारे में बता सकता हूँ जिनके बारे में डॉक्टरों ने तस्दीक की थी कि वो मर चुके हैं, मगर दुआ के बाद मौत को झिड़क दिया गया। समझे, हम वहाँ खड़े हुए और मौत को झिड़का। और अगर खुदा आपको कुछ करने के लिए कुव्वत देता है तो आपके लिए बेहतर है कि एहतियात से काम करें। समझे, आपके लिए बेहतर है एहतियात। उसने कहा, नहीं। अब याद रखें, हो सकता है ये बात आपके लिए बहुत अहम ना हो, मगर मेरे लिए तो ये बड़ी अहम बात थी। समझे, उसे मत झिड़कना। यकीनन शफकत और प्यार से भरी आवाज थी। 6:30 बजे, मेरा ख्याल है सुबह के 6:30 का वक्त था। कहा, इसे मत झिड़कना, ये खुदावंत का हाथ है। मैंने कहा, शुक्रिया ए बाप, शुक्रिया खुदावंत, मैं ये नहीं करूँगा। अगर उसने कहा होता उसे झिड़क तो दुश्मन शिकस्त खाता, तो मैंने कहना था चलो चलें, तो ऐसा ही हो जाता। जब वो छोटा लड़का वहाँ फिनलैंड में सड़क के किनारे मुर्दा पड़ा हुआ था, वो कुचला हुआ था और उसकी हर एक हड्डी टूटी हुई थी, और खुदावन ने कहा, ये शैतान का हाथ है। कहा, इसे झिड़क, और मैंने कहा, मौत, तू इसे पकड़ नहीं सकती, इसे वापिस ला, इसे छोड़ दे। वो वहाँ अपने कदमों पर उठ खड़ा हुआ और ठीक उसके बदन की सब हड्डियाँ जुड़ गयी, क्योंकि ये खुदावन का कलाम था। मैं खुदावंत का कलाम उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक खुदावंत का कलाम मेरे पास आता नहीं, लेकिन कलाम में खुदावंत का कलाम मुझे ये इख्तियार देता है कि इन बीमार लोगों के लिए दुआ की जाए। आपके पास इख्तियार है कि बीमार लोगों के लिए दुआ करें। अब देखें, ईमान से की गई दुआ के बायस बीमार बच जाएगा। आए दुआ करते हैं, आप अपने सरों को झुकाएं। हम इंतजार करते हैं और देखते हैं वो क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। आप एक मसीही हैं क्या? नहीं है? क्या आप अपने पूरे दिल से यीशु पर ईमान रखते हैं कि आप तंदुरुस्त होने जा रहे हैं? बहन, आपको मैदे की बीमारी है और इस बीमारी से आप कई सालों से दुख उठा रही हैं। अब अगर आप ईमान रखेंगी तो आप ठीक हो जाएंगी। अब ऐ खुदावन खुदा, ये जवान बहन मर जाएगी अगर तूने इसकी मदद ना की। अब मैं दुआ करता हूँ और देख रहा हूँ कोई सबब नहीं कि ये बहन मरे, और मैं रूह में महसूस कर रहा हूँ खुदावन कि ये तेरा इजाजतनामा है कि अब मैं इसको झिड़कूं। शैतान, इस बहन को छोड़ दे। यीशु मसीह के नाम में ये बहन शिफा पा जाए और इस कलीसिया में आए और खुदा के लिए गवाही दे। आमीन। अब ए खातून, ये कितना सादा है कि आप शिफा पाने जा रही हैं। भाई, क्या आप भी ईमान रखते हैं? क्या आप जो यहाँ नीचे हैं ईमान रखते हैं कि आप शिफा पाने जा रहे हैं? अब जाएं और जो आप चाहते हैं खाना शुरू करें और आप शिफा पा जाएंगे। अब आप दुनिया को जरब लगाने की उम्मीद करते हैं, मगर ये तो मफलूज है और ये आपको जरब लगाती है और आप मफलूज हो जाते हैं। लेकिन आसमान का खुदा गुनाहों की माफी देकर इस दुनिया को जरब लगाकर खत्म करता है। जिस नाम के वसीले वो गुनाह की माफी देता है, उसी नाम के वसीले वो आपके जरब को खत्म करता है और आपको ठीक करता है। ईमान रखें, वो आपके दिल की धड़कन ठीक कर सकता है। क्या आप ईमान रखते हैं? आप ठीक हो जाएंगे। खुदावंद यीशु, ये गरीब औरत जो कुर्सी पर बैठी हुई है, ये अपनी बाकी जिंदगी इसी पर बैठी रहती और फिर मर जाती, लेकिन हम इस शैतान की ताकत को इस बहन से दूर करते हैं ताकि ये जिंदा रह सके और ठीक चल सके और मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार सके जैसी वो थी। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। क्या आप ईमान रखती हैं? काम मुकम्मल हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, फिर क्या मसला है? मत डरें। नहीं, ये नहीं था। एक मर्तबा आपने कैंसर से भी शिफा पाई थी। आजाद हो जाएं, यीशु को सब कुछ सौंप दें। खुदावंद यीशु, मैं अपना हाथ इस खातून पर रखता हूँ और इसकी बीमारी को झिड़कता हूँ। मैं जानता हूँ ये रूस से पैदा शुदा मसीही बहन है। मैं इस बीमारी को इससे दूर करता हूँ। यीशु मसीह के आला नाम में मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद खुदा, इसके कीमती भाई के लिए यीशु नाम में निजात मांगता हूँ। इसमें कायम रहें, आमीन, ये हो जाएगा। बेटा, क्या आप शिफा पाने के लिए तैयार हैं? ठीक है, बीमारी उसके हाथ के वसीले जा चुकी है। खुदावंद यीशु, इस जवान शख्स पर जिसने तेरी जानिब से कहा है और वो अपनी शिफा हासिल करने के लिए दुआ गो है, तेरा खादम होते हुए मैं अपने हाथ यीशु मसीह के नाम से इस पर रखता हूँ, आमीन। अब फक्त कोई भी, अब आप सिर्फ उसके नाम को पुकारें, अब मुझे नहीं, नहीं। ऐ खुदा बाप, जैसे फक्त एक बेटा अपनी माँ की गोद के सहारे होता है, वो उसे थपथपाती है और जब वो रोता है तो उसके मासूम हाथों को थाम लेती है और उसके लिए दुआ करती है, अब शैतान इसे पागलखाने ले गया है। ऐ खुदा, अब उसका बेटा जिंदा खुदा की पाक कलीसिया में आया है, उस कलीसिया में जो खुदा के रूह से मामूर है और खुदा का रूह इस कलीसिया में बसा हुआ है और अपने आप को जाहिर करता है, और आज दुआ के वसीले हम उस बहन को पागलखाने से आजाद करते हैं। हम ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। घर जाएं, आपके लिए सब कुछ ठीक हो गया है। आपकी आमद का शुक्रिया। अपनी माँ से मिलें, आप हकीकी बेटे हैं। आज का दिन आपकी मुखलिसी का दिन है। खुदावंद यीशु, इस नौजवान बहन के शोर के लिए निजात मांगता हूँ और इसके गले के लिए शिफा मांगता हूँ। ये यीशु मसीह के नाम से शिफा पा जाए जिसने कहा है आओ और ईमान रखो। ये आपके लिए हो चुका है। खुदावंत, डॉक्टरों ने ये कहा है, खुदावंत, ये इसके बदन में आंख के जरिए आई है। अब ये इस मजबा पर इस पाक कलीसिया की दुआओं से शिफा पाने आई है। मैं इसकी शिफा यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। ये वबा इसके बदन को छोड़ जाए। इसका काम मुकम्मल हो चुका है। इसके बेटे के लिए मैं इस रुमाल को मसा करता हूँ। उसकी हालत ठीक हो जाए और वो दोबारा से सुनना शुरू कर दे। अब कलीसिया फरमाती है, कलीसिया मसीह का रूहानी बदन है। हम सब आपके लिए दुआ गो हैं, समझे। अब हम मजीद दुनियादारी का इकरार ना करें। अब हम उसकी आवारगी की बात ना करें जिसमें हम जा रहे थे। हमें तो रास्ता मिल गया है। हम इस रास्ते में पैदा हुए हैं। हम जिंदा खुदा की कलीसिया है। ये उसका हिस्सा है। बेशक ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये उनकी जमायत है जो आज उसके नाम में जमा हुए हैं। हम वो करने के लिए आए हैं जो उसने कहा है करो। वो क्या कुछ जाहिर नहीं कर सकता जब हम इकट्ठे होते हैं। बीमारों पर हाथ रखें और उनके लिए दुआ करें। ईमान से की गई दुआ से बीमार शिफा पा जाएगा। आपके दिल की बीमारी जाती रही है। यीशु मसीह के नाम में मैं उस हुक्म की फरमाबरदारी करता हूँ जो उसने मुझे दिया था।